ओम शांति। आप सभी चंडीगढ़ से हैं? कहाँ से हैं? चंडीगढ़ से हैं, हरियाणा से। ओके, बहुत अच्छा। तो आप में से कुछ मेडिकल प्रोफेशनल्स भी हैं, डॉक्टर्स हैं कुछ आप में से? बस ठीक है। तो मैं शुड आई स्पीक इन हिंदी और इंग्लिश? ओके, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड मतलब बेसिकली। ओके, चलिए हम बात करते हैं हेल्दी हार्ट हैप्पी माइंड एंड हेल्दी बॉडी। आप सभी चाहते हैं? आप में से कितने लोग हैं जो बीमार होना चाहते हैं? नहीं होना चाहते? आप में से कितने लोग हैं जो स्वस्थ रहना चाहते हैं? पूरा स्वस्थ हो तभी मैंने पूरा हाथ उठाएंगे। आप में से कितने लोग हैं जो दुखी रहना चाहते हैं? नहीं चाहते? कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि हम सदा खुश रहें? यस, आप नहीं चाहते? ऐसा समय भी था आज कभी धरती पर जब सदा खुश थे। ऐसा समय भी था जब कोई रोग नहीं थे, निरोगी काया थी। पता काया कितनी होती है हमारे पास? शरीर कितने होते हैं हमारे पास? एक या दो? एक ही होता है। तीन होते हैं? किसने क्या, कौन कौन से होते हैं? और तीसरा कौन सा? बेसिकली हमारे पास दो शरीर होते हैं, एक सूक्ष्म काया होती है, एक स्थूल काया होती है ना। सूक्ष्म दो काया हमारे पास रहती है। पहली काया कौन सी है हमारी? सूक्ष्म काया। सूक्ष्म शरीर कौन सा है हमारा? एनीवन? हमारा मन ही हमारा सूक्ष्म शरीर है, राइट? हमारा मन ही हमारा सूक्ष्म शरीर है, और फिर उसके आधार पे हमारा शरीर बनता है, फिजिकल स्थूल काया बनती है। तो चलिए, मैं तो आपसे, वैसे मैं तो जैसे आप सोचते हैं मैं हार्ट स्पेशलिस्ट हूं, किंतु मैं इसमें कैसे आया? आप सभी जानते हैं कि पेपर दिल्ली, मतलब जैसे मैं दिल्ली में, मेरा बर्थ हुआ दिल्ली में, MBBS किया दिल्ली में, MTech किया दिल्ली में, फर्दर स्पेशलाइजेशन किया। मौलाजार से मैं हूँ वैसे, ओरिजिनल मौलाजार मेडिकल कॉलेज से। तो हम लोग जब दिल्ली एम्स में थे ना, दिल्ली ऑल नेशनल मेडिकल साइंसेज में थे, तो हम साउथ एक्सटेंशन के पहली तरफ आयुर्विज्ञान नगर है, कुछ दिल्ली से कुछ कनेक्ट होंगे पता, जहाँ आईशेड विलेज कॉम्प्लेक्स था, वहीं पे कुछ डॉक्टर्स का रेजिडेंस बने हुए थे, एम्स के डॉक्टर्स का। नॉर्मली तो हम बहुत बिजी रहते थे, किंतु सैटरडे, सेकंड सैटरडे हमारा ऑफ, आधा दिन ऑफ होता था, हाफ डे ऑफ होता था। तो एक दिन हम फिल्म देखने जा रहे थे, मैं ब्रह्मा कुमारी में कैसे आया मैं आपसे पहले शेयर कर लेता हूँ, क्योंकि आपको भी मतलब हम लोग जैसे आप हैं आज, हम वैसे ही थे। तो हम, मैं और मेरी वाइफ और हमारा बेटा उसमें 2 साल का था, तो स्कूटर पे हम लोग जा रहे थे, सेकंड सैटरडे का दिन था। तो हम, एक फिल्म लगी थी उपहार सिनेमा में, इसके पहली तरफ एक उपहार सिनेमा था, उसमें नगीना फिल्म लगी थी ऋषि कपूर श्रीदेवी की। जानते हैं ऋषि कपूर को? जानते हैं? मैंने कहा शायद नहीं जानते हो। तो हम लोग फिल्म देखने जा रहे थे, तो रास्ते में एक ब्रह्मा कुमारी का सेंटर था साउथ एक्सटेंशन में, तो वहां पर लिखा था बाहर गेटवे टू हेवन। तो मेरी वाइफ जो पीछे बैठी थी, उन्होंने कहा अरे देखो क्या लिखा है यहाँ पर, गेटवे टू हेवन, स्वर्ग में जाने का रास्ता, आप तो मुझे नरक में ले जा रहे हो, है ना, हेल में लेके जा रहे हो, क्योंकि वहां अंधेरा हो जाता है। हमारा बेटा था, छोटा था, तो अंधेरा उसको अच्छा नहीं लगता था, वो बाहर भागता था, तो उसकी मदर को ही बाहर भागना पड़ता था। तो कहते मेरे को वहां नहीं जाना है। तो मेरे को कहाँ जाना है? इसके अंदर जाना है। मैं कहने आज तो नहीं जाते हैं, बाद में जाएंगे। मैंने, उसने कहा मुझे जाना है, आज ही जाना है, आप जाओ, मैं ये रुक जाती हूँ, मैं देखती हूँ अंदर क्या है। तो फिर हमने दोनों अंदर गए और तीनों अंदर गए, तो वहां जाके देखा समझा। तो समझ में आया कि वहां पे बहुत साइंटिफिक, जैसे डॉक्टर हम बहुत लॉजिकल होते हैं ना, वी डोंट बिलीव एनीथिंग लाइक दिस, कुछ में कह रहे ऐसा है तो ऐसा हम मानते नहीं है। पर हमने देखा उसमें जाकर के हमें समझ में आया कि इसे पता ना, एक कार दिखाई थी आपने देखी हुई, यहां पर एग्जीबिशन देखी हुई, एक तरफ कार एक तरफ ड्राइवर है ना, एक तरफ शरीर एक तरफ आत्मा है। तो समझ में आया कि मैं आत्मा कैसे इस शरीर को चलाती हूं। ओम शब्द का अर्थ इसमें समझ में आया कि ओम शब्द में दो शब्दों से बना है, ओम माना अहम प्लस मम, संस्कृत में दो, वैसे तो ओम शब्द के बहुत मतलब है कि तो उसका अर्थ ओम माना अहम, अहम प्लस मम, अहम आत्मा मम शरीरम, मैं आत्मा हूं ये मेरा शरीर है। तो ये समझ में आया कि ये सचमुच मैं जो हूं ना, मैं तो एनर्जी हूं, क्योंकि जब हमारे हॉस्पिटल में कोई सीरियस पेशेंट आता है उसको हम बचाने की कोशिश करते हैं और बचा नहीं पाते, आफ्टर ऑल दी एफर्ट एक घंटे के बाद अंदाजा वी गिव एटलीस्ट वन आवर कोई सीरियस पेशेंट आता है तो बचा नहीं पाते, तो क्या कहते हैं हम जब बाहर आते हैं हॉस्पिटल के उसके इमरजेंसी रूम के बाहर आते हैं तो पेशेंट्स के रिलेटिव वेट कर रहे होते हैं, तो क्या क्या कहते हैं, आई एम सॉरी वी ट्राइड अवर बेस्ट ही हैज गॉन टेक द बॉडी, यही बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, एक घंटे पहले कौन आया था, पेशेंट है ना, अभी क्या बन गया, पहले वेट 70 किलो था अभी भी वेट 70 किलो है, पहले ब्रेन तो उसके अंदर पहले भी था अभी भी है, हार्ट तो पहले भी था अभी भी है, लीवर तो पहले भी था अभी भी है, नहीं है, किडनी तो पहले भी थी अभी भी है, पर अभी क्या बन गया, बॉडी। गलती से भी अमेरिका में हम कहते हैं, गलती यूएस में यूके में बोलते हैं कभी, गलती से अपना पेशेंट वापस ले जाओ ऐसे बोलते हैं, वो मर गया वापस ले जाओ ऐसे बोलते हैं कभी, बाई मिस्टेक कोई बोलता है कभी, तो पेशेंट बॉडी कैसे बन गया, क्या निकल गया, अगर इसी इसमें सारे ऑर्गन फंक्शन लेस हो गए, बेकार हो गए, किसी काम के नहीं है अभी ना, इसी डेड बॉडी में से अगर इस व्यक्ति यंग था, एक्सीडेंट हुआ, उसका डैमेज हुआ, हेड इंजरी वॉट एवर हैपेंड, और वो मर गया, पर उसकी बाद में की उस लड़के की, लड़का ही था मतलब 25 का होगा, मोटरसाइकिल एक्सीडेंट हुआ जैसे, तो लेके आए तो बच, तो उसकी इच्छा थी पहले कि मेरे मरने से, मरने के बाद मेरे कोई भी ऑर्गन, किसको, आजकल तो ऑर्गन डोनेशन फॉर्म कॉलेज में भरवा लेते हैं, पता है ना आपको, तो इच्छा थी कि मेरे मरने के बाद मेरे ऑर्गन किसी को दे दी जाए, बाई चांस कभी मेरी डेथ हो जाए तो। उसी हॉस्पिटल में एक पेशेंट है जिसकी हार्ट की इजेक्शन फ्रैक्शन, पंपिंग पावर 10% रह गई, 15% रह गई, उसका उसका सिर्फ इलाज क्या है, हार्ट ट्रांसप्लांटेशन। यंग लड़का है, कोई 25-30 साल का ही है, तो अगर इसकी टिश्यू मैचिंग उस बच्चे के साथ कर ली जाए, उस आदमी से कर ली जाए, तो क्या होगा, उसको हिस्टो कंपेटिबिलिटी मैचिंग कहते हैं, टिश्यू मैचिंग कहते हैं, तो अगर हो जाए, टिश्यू मैच हो जाए, तो हम यहां से हार्ट निकाल के और ये हार्ट उसका पुराना वाला हार्ट निकाल के ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, और हार्ट जो यहां काम नहीं कर रहा वहां काम करना शुरू कर देता है, इसका क्या अर्थ हुआ, उसमें इसमें आत्मा निकल गई, ड्राइवर निकल गया, उसमें आत्मा है, तो अंग ने हार्ट ने काम करना शुरू कर दिया, राइट, है तो वही हार्ट जो डेड डिक्लेयर कर चुके डेड बॉडी में से, अगर लीवर भी निकाल के लगा दें उसके अंदर तो लीवर भी काम करना, किडनी निकाल के लगा दें तो चलाने वाला कौन है, हार्ट को चलाने वाला कौन, एनर्जी है ना वो जो चला रही है, नहीं? वो एनर्जी चला रही है ना उसको, है ना, तो ये एनर्जी हमको चलाती है ना? लीवर को कौन चलाता है, वही एनर्जी चलाती है, और किडनी को कौन चलाता है, इवन कॉर्निया भी ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, सपोज वो व्यक्ति हमारे पास है हॉस्पिटल में जाकर उसका कॉर्निया ओपेक हो गया है, सफेद हो गया है, तो वो कॉर्निया हम यहां से लगा के निकाल के तुरंत ही लगा सकते हैं, उसको दिखाई देना शुरू हो जाएगा, तो देखता कौन है, आंखों से देखने वाला कौन है, आत्मा। तो ये बात मुझे उस दिन समझ में आई, 1986 की बात है, तो समझ में आई, तो अंदर से जैसे बत्ती जल जाती ना, ट्यूबलाइट से लाइट जल गई है ना, समझ में आया, बीइंग लॉजिकल तो हम होते ही हैं, तो मेरे को लगा ये बात तो बिल्कुल ठीक है, आत्मा में आज आदमी बीमार क्यों हो रहा है, दुखी क्यों रहे, ये भी पता लगे कि आत्मा की साथ साथ चैतन्य आत्मिक ऊर्जाएं इनेट एनर्जी है, जैसे पानी, जैसे गर्म पानी आग है ना, उसकी उसकी इनेट एनर्जी क्या है, गर्मी, और पानी की इनेट एनर्जी क्या है, ठंडक। तो अगर ठंडी लगती तो हम क्या कहते हैं, भी आग जलाओ, कुछ करो, हीटर चला दो, और गर्मी लगती है तो क्या कहते हैं, पानी पीना, प्यास लगी है ना। तो ऐसे जो आत्मा की जो एनर्जी इनेट एनर्जी क्या है, आत्मा की इनेट एनर्जी जो है वो सात है, ज्ञान अर्थात समझ के हूं है माई समझ, हमें क्या, हम क्या समझते हैं, मेल फीमेल, डॉक्टर इंजीनियर बिजनेसमैन, ये वो नहीं, ये तो समझते हैं अपने आप, मां, कोई अपने को मां समझता है, कोई अपने को बाप समझता है, कोई पति समझता है, पत्नी समझता है, कभी कोई पत्नी पैदा होती है क्या, कोई बच्चा पैदा हुआ बोलो पत्नी पैदा हुआ ऐसे बोलते हैं, कोई पति पैदा होता है कभी कि पति पैदा हो गया, कभी बोलते मां पैदा हो गई, बाप पैदा हो गया, ऐसे बोलते हैं कभी, ऐसा बोलते हैं कभी डॉक्टर पैदा हुआ है, इंजीनियर पैदा हुआ है, ऐसा बोलते हैं कभी, उत्ते दीज आर रोल्स ना, वी आर प्लेइंग डिफरेंट रोल्स। एक आदमी कितने रोल प्ले करता है घर में, एक दिन में कितने रोल प्ले करता है, मैनी रोल्स, हॉस्पिटल में डॉक्टर है, घर में बेटा भी है किसी का, भाई भी है किसी का, पति भी है किसी का, बाप भी है नहीं, किसी का फ्रेंड भी है, तो सो मेनी आर वी रोल्स। मैं अपने आप को, मैं बॉडी हूं क्या, तो आज इन बातों को गहराई समझेंगे, तो उसने समझ आई कि मैं आत्मा सात चैतन्य आत्मिक ऊर्जाओं का पुंज हूं, और मैं आत्मा शरीर को चला रही हूं, मैं आत्मा अंदर हूं तो सब कुछ चल रहा है, और मैं आत्मा नहीं हूं तो क्या होता है, क्या हो जाता है, डेड बॉडी हो जाती है। कोई इसकी वैल्यू कितनी, कितने पैसे का, डेड बॉडी हो जाए तो कितने पैसे का बिकेगा, वो किसी को बोल दो वो 5,000 रुपये में ले जाओ, ले जाएगा कोई, लेके भी कुछ नहीं, कोई लेके जाएगा, और आदमी की हो सकता है फीस ही 5,000 रुपये हो एक किसी पेशेंट को देखने की ना, एक पेशेंट देखने की 5,000 रुपये फीस हो, क्योंकि आत्मा निकल गए तो कितने पैसे की है, उस व्यक्ति को पूरा ही 5,000 का नहीं है, नहीं तो वैल्यू किस चीज की है, एनर्जी जो है ना, आत्मा की एनर्जी। फिर आदमी बीमार क्यों हो जाता है, बीमारियां क्यों बढ़ रही हैं, आज इन बातों को समझेंगे, बीमारियां क्यों हो रही हैं, कैसे हेल्दी बने, राइट। हम दुखी क्यों हो जाते हैं, सब कुछ है आपके पास, मोबाइल भी है, टीवी भी है, और क्या है, घर भी है, कार भी है, डॉक्टर भी है, अगर आपको खाना बनाने की आवश्यकता भी नहीं है, मोबाइल पे फोन करो खाना घर में आ जाएगा, पहले तो सुविधा ही नहीं थी, आज तो आपके बहुत कुछ है, फिर भी आप में से कितने लोग जो सदा खुश रहते हो, सदा खुश, कोई गाली दे तो भी कोई बात नहीं, आपकी इंसल्ट कर दे कोई हर्जा नहीं, बताओ हाथ उठाओ, कोई भी नहीं, ऐसे पीछे 2-3 लोग हैं, चेक करना, आपके पति से चेक करना पड़ेगा, ये पति प्रूफ, क्योंकि हमारे पास ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, हमेशा मैं बुलाता हूँ, हस्बैंड वाइफ को साथ में बुलाता हूँ, वो पुडी में आते हैं ना, तो मैं कहता हूँ इवन हार्ट के जो प्रोग्राम्स होते हैं ना, हस्बैंड वाइफ को साथ, अगर हस्बैंड बीमार तो पत्नी को जरूर बुलाता हूँ, पत्नी बीमार है तो हस्बैंड को जरूर बुलाता हूँ, क्योंकि पति पत्नी एक दूसरे की बीमारी की जड़ होते हैं ना, जड़ के बगैर बीमारी ठीक कैसे होगी, तो दोनों ठीक होंगे तब तो बीमारी ठीक होगी, एक पहिया तो एक दो पहिया की गाड़ी होती है ना, एक पहिया ठीक करने से गाड़ी बन जाएगी, नहीं बनेगी, दोनों को ठीक करना आवश्यक है, तो इसलिए हम आपको आज वो शेयर करेंगे कि कैसे हमें अपने आप को समझना है कि हम खुश कैसे रहें, हम हेल्दी कैसे रहें, राइट, चाहते हो सभी ना, और शरीर में बीमारियां तो चलो आ गई पर ठीक कैसे कर लें उसको, ऐसा हम आपसे शेयर करेंगे। तो ये जो है हमारा, दिखाई दे रहा है सभी पीछे, ये मैं दिल्ली पहले एस्कॉर्ट्स में था, दिल्ली एस्कॉर्ट हार्ट इंस्टीट्यूट में था, वहीं रह के जब देखते थे हम लोग को, हम लोग देखते थे कि हम लोग पहले तो हार्ट की बीमारी आती थी 70 ईयर्स में, 65 ईयर्स में, उसके पहले नहीं आती थी, और 1960 की बात है, 100 में से एक आदमी को हार्ट की बीमारी होती थी, फिर क्या हुआ जैसे जैसे भारत में 65 की जो वॉर हुई ना पाकिस्तान के साथ, जो पुराने लोग उनको पता होगा, हैं कुछ पुराने लोग आप में से, 65 की वॉर के बाद भारत में काल पड़ा था एक ना, तो जब भी जय जवान जय किसान का नारा लगा था तो उसमें नारा लगाया ना लाल बहादुर शास्त्री ने लगाया था, तो उस समय उससे पहले अकाल पड़ रहा था धरती पर भारत में, थोड़ा सा पानी सर्फ बरसा फसल हुई नहीं थी, और गेहूं उस समय देसी गेहूं बहुत अच्छा था भारत में, बहुत बढ़िया चपाती बनती, टेस्ट बहुत अच्छा होता था, तो उस समय क्या पर उसकी उपज बहुत थोड़ी थी, तो उस समय अकाल पड़ गया तो गेहूं मिल ही नहीं रहा था, तो उस समय अमरीका में तो गेहूं बहुत उगता था, समुद्र किनारे बस ऐसी प्लेन से छिड़क दिया तो खेती हो जाती थी, पर वो कल्याण गेहूं था, कल्याण समझते हैं, भारत का गेहूं 306 नंबर था ना, तो है जी हाँ, तो वो आया वाला गेहूं, वो वाला गेहूं आया, तो फिर क्या हुआ कि वो गेहूं में ग्लूटेन वगैरह नहीं था, बहुत बैलेंस्ड गेहूं था वो, है ना, तो वो खाने से बीमारियां नहीं होती थी, पहले तो मोटा आटा भी खाते थे, ज्वार बाजरा खाते थे, चना खाते थे, चना तो गेहूं में डालते ही डालते थे, फिर जब अकाल पड़ा तो अमेरिका ने भारत को वो गेहूं दिया, वो उसकी आटे की रोटी कैसे बनती थी पुराने लोग जानते होंगे, जैसे वो आटे का जैसे रबड़ होती ना, इट वॉज लाइक दैट, हमें याद है रबड़ जैसे रोटी चपाती बनते थे, लाल जैसे था ना, है जी पीपी 18 बोलते थे, और लाइन में लगना पड़ता था, जितने ज्यादा बच्चे उतने लाइन में ज्यादा लग सकते थे ना, एक कोले की में, एक तेल की में, एक राशन की लाइन में, हाँ जी, तो बच्चे जिससे ज्यादा की आवश्यकता थी उसमें, तो तब ऐसा था, तो उसमें क्या हुआ कि उस समय भारत का मतलब औद्योगिकरण हो गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, कि गांव के पास ही सस्ती जमीन थी तो वहां फैक्ट्री लग गई, तो जो पहले ज्वाइंट फैमिली सिस्टम था वो न्यूक्लियर फैमिली बन गई, क्योंकि बच्चे कहाँ गए कि शहर की तरफ चले गए, नौकरी नाइट शिफ्ट शुरू हो गई, रात को पहले दिन में सोते थे, रात को मतलब रात में सोते थे दिन में जागते थे काम करते थे, हमारी लाइफ स्टाइल बहुत अच्छी थी, फिर गेहूं के बजाय उस समय क्या हुआ किसान अपने जो थे एग्रीकल्चर साइंटिस्ट, आप में से कोई एग्रीकल्चर साइंटिस्ट है, कोई एग्रीकल्चर साइंटिस्ट है नहीं है, हाँ तो वो क्या था उसमें उन्होंने क्या किया उसकी, क्योंकि इसकी उपज बहुत थोड़ी थी, कल्याण गेहूं की उपज बहुत ज्यादा थी, तो दोनों का एक हाइब्रिड बना दिया, तो भारत में हरित क्रांति हो गई है ना, तो वो गेहूं इतना उगा बहुत उगा पर उसमें ग्लूटेन बहुत था, तो हमारा गेहूं बदल गया, चना महंगा हो गया था तो चना खाली लोगों ने गेहूं की रोटी खानी शुरू कर दी, नाइट शिफ्ट शुरू हो गई, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम टूट के न्यूक्लियर फैमिली हो गई, बस पिता माता पिता और बच्चे, पहले तीन पीढ़ी एक घर में होती, दादा दादी माता पिता और बच्चे, तो पता ही लगता था कितने बच्चे, 10 बच्चे भी समझ जाते थे आराम से, प्रॉब्लम नहीं थी, तो स्ट्रेस बढ़ा, फिर हमारा अनाज खराब हुआ, नाइट शिफ्ट शुरू हुई, दिनचर्या खराब हो गई, साथ में मेटेरियलिज्म आ गया, पैसा थोड़ा ज्यादा आ गया लोगों के पास, तो रॉन्ग फूड्स खाने शुरू कर दिए, एक्सरसाइज देर से सोना देर से उठना शुरू हो गया, अभी तो 25 साल से क्या हुआ ये क्या आ गया कितना प्यार है इससे सबको, नहीं इसी में लगे थे, मैं आया था सभी इसी में लगे हुए थे ना, जब आया देखो सभी इसमें कितने सिंसियरली लगे हैं, बहुत लगन से, ये सारे देश को आप नहीं बदलना है, पाकिस्तान से वार को आपको ही ठीक करना है, नहीं कितने सिंसियरली आप सिरसा की न्यूज सुन रहे थे, इधर की न्यूज उधर की न्यूज, कितने फोकस थे आप, तो इसने क्या किया, इसने तो और ही गड़बड़ कर दी, तो 70s में टीवी आया, उसके बाद 25 साल के बाद लगभग ये आ गया, तो ये मतलब जो है हमारा ओरिजिन, तो सारा प्रॉब्लम क्या हुई कि इतनी पिछले 50 साल में 60 के बाद, एक तो डायबिटीज जो हाइपरटेंशन 100 में से एक आदमी को होता था 60 में, अब कितने परसेंट को, 30% को हाइपर प्रेशर हो गया, डायबिटीज 100 में से एक आदमी को भी नहीं होती थी वो अब तो 10-15% को हो गई, बढ़ती जा रही है ना, हार्ट डिजीज जो 100 में से एक आदमी को होती थी सिर्फ अमीरों को होती थी, स्टेटस सिंबल था, कोई किसको हार्ट अटैक आया माना बड़ा आदमी है ना, मतलब किसी मिडिल क्लास तो होती नहीं थी, लोअर मिडिल क्लास मतलब ही नहीं है, और अभी क्या हो रहा है, मैं जब एस्कॉर्ट्स में था दिल्ली में तो मैं देखता था लोग ना 35-36 साल में हार्ट अटैक लेके आ रहे हैं, और मिडिल क्लास नहीं, मिडिल क्लास में नहीं, लोअर मिडिल क्लास वाले, 36 साल में हार्ट अटैक आ गया, और एक मतलब वाइफ है, बच्ची है, गोदी बच्ची गोदी में, एक छोटी बच्ची और साथ में, और पति को ओनली अर्निंग हैंड पति था, हार्ट अटैक आ गया, हमने एंजियोप्लास्टी कर दी, तो तीन चार महीने फिर तकलीफ हो गई, फिर हार्ट की प्रॉब्लम हो गई, फिर देखा दोबारा तो हमारे हमने देखा जब राउंड पर जाते हैं ना हम लोग, तो हमने कहा उसकी एंजियोग्राफी हुई, तो पहले तो मैनेज करते हैं, पहले इमीडिएट एंजियोप्लास्टी नहीं होती थी, एक दिन रुक के स्टेबल करने के बाद अगले दिन एंजियोग्राफी करते थे। तो हमने राउंड पे गए तो हमने कभी ये तो उसकी एंजियोग्राफी, फिर उसने एंजियोग्राफी हो गई थी, तो हमने कहा देखो तो अभी तो आपका स्टैंड भी बंद हो गया, दो नए ब्लॉक आ गए, अभी तो कम से कम दो स्टैंड तो लगाने पड़ेंगे। तो उस पेशेंट राउंड के बाद उसमें उसने कुछ नहीं बोला, पेशेंट ने राउंड के बाद मुझे बुलाया, राउंड लेने के बाद हम जाते नर्स डॉक्टर से मिलकर ग्रुप जाते ना, उसने डॉक्टर साहब आपको याद है मैं तीन चार चार महीने पहले आया था। मैंने कहा हाँ थोड़ा थोड़ा तो याद आ पाए थे, ऐसा ऐसा हुआ था, क्योंकि उसकी वाइफ थी, उसकी छोटी बच्ची थी गोदी में और एक वैसी बच्ची, तो उसकी पत्नी को मैंने बोला था आपके पति को हार्ट की प्रॉब्लम हो गई, इसके आर्टरी 80-90% ब्लॉक है और इसको हमें इमीडिएटली स्टेंट लगाना पड़ेगा, नहीं तो डेथ हो जाएगी, मतलब खतरा बहुत रहेगा। उसने कहा डॉक्टर साहब मेरे तो मेरा घर में कुछ है ही नहीं कमाने वाला, इतने पैसे, मैंने कहा 2,00,000 रुपये लगेंगे, अब हमारे फाइनेंस डिपार्टमेंट में जमा कर दो अकाउंट में, तो हम कल इसकी एंजियोप्लास्टी कर देंगे, स्टैंड लगा देंगे। डॉक्टर साहब कैसे भी करो आप इसको स्टैंड लगा दो, मेरा पति ठीक हो, मैं आपको पैसे सुबह जमा करा दूंगा, प्राइवेट हॉस्पिटल है तो वहां तो बिना पैसे की बात नहीं होती। तो उसने 2,00,000 रुपये जमा करा दिए, हमने उसकी इंटरवेंशन कर दी, फिर ठीक है वो चला गया। हम 3 महीने बाद फिर दोबारा, 4 महीने बाद दोबारा आया, तो फिर उसने कहा आपको तब पता है मेरी पत्नी ने कैसे मेरा ऑपरेशन कराया था, रात मेरा हमारा घर भेज दिया, क्योंकि 2.5-3 लाख में उसमें MIG फ्लैट मिल जाता था और प्रॉपर्टी डीलर तो बहुत होते हैं, तो मुसीबत में तो और ज्यादा कम करा लेते हैं। तो उसने आता रातों रात पैसा दे दिया उसको और घर उसका खरीद लिया, 3 लाख में घर खरीद लिया, शायद 2.5-3 लाख में घर खरीदा होगा। तो उसने कहा डॉक्टर साहब इतने पैसे मेरे को मिले थे, 2 लाख यहाँ जमा करा दिए और बाकी जो पैसे थे 3 महीने से घर पर ही बैठा हूँ, तो बाकी पैसे भी खत्म हो गए। अभी आप कह रहे दोबारा इंटरवेंट, दोबारा एंजियोप्लास्टी करा लो, दोबारा 2 स्टैंड लगवा लो, 3 लाख जमा करा दो हॉस्पिटल में या बाईपास करा लो, तो अब मैं क्या बेचूं? अब मेरे पास तो कुछ भी नहीं बचा है, घर भी किराए का है और कुछ भी नहीं है, तो घर पे तो हमने बेच दिया था, पत्नी के गहने भी बिक गए, अभी क्या मैं बेचूं? तो मुझे उसमें बहुत फील हुआ, क्योंकि मैं 1986 में ज्ञान में आ गया था, क्योंकि बताया ना वो गेटवे टू हेवन, जब अंदर गए तो समझ में आते ही हम लोग क्या गए, बस मेरे को तो दिमाग में जज गई कि भाई ये है, आत्मा के साथ एनर्जी कम हुई तो शरीर में बीमारी आ गई, और अगर परमात्मा जो पावर है उस साथ एनर्जी का, उसी दिन मुझे कविता ये वाली याद आ गई, बचपन में टाइम गाते हैं नर्सरी टाइम, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, ये फ्रेंच कविता, फ्रेंच पोइट की कविता है, तो पोइट वोइट तो बाद में नाम कह दिया, पर पोइट था नहीं वो, ऐसे आम आदमी था। उसका दोस्त मर जाता है तो वो दिन में मर जाता है, साथ में रहते थे बचपन से, मर गया तो उस रात में सितारे देख रहा है, बहुत दुखी है, आज आसमान में सितारे देखता तो उसको क्या होता है, फील होता है यार सितारा है, वो सितारा जो है ऊपर आसमान में चमक रहा था, तब उसको याद आता है कि जो थे ना ईसा मसीह का जन्म हुआ ना तभी, तो जो शेफर्ड थे ना उन्हें कहा था एक सितारे ने ईसा मसीह के रूप में जन्म दिया, ये कहा था ना, तो उसने कहा फिर मेरा मतलब जो यहाँ पे एक सितारा है उसको अंदर से रियलाइज होता है, अंदर एक सितारा जब तक तो चमक रहा है टिमटिमा रहा है तब तक सब कुछ चल रहा है, जैसे वो निकल जाता है सब कुछ भी नहीं चलता, तब अंदर से एक लाइन निकलती है वाली, कौन सी, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, सभी को आंख खोल के सुन रहे हो, सोकर आंख जो बंद करके बैठे हाथ उठो, अलर्ट होकर बैठो, मैं आपको बोर नहीं करूंगा, ठीक है, तो मतलब तो उसको रियलाइज हुआ कि अंदर से एक जो आत्मा है या जो भी पॉइंट ऑफ एक सितारा है अंदर जो चमक रहा है टिमटिमा रहा है जो वॉट एवर, वो जब तक है सब कुछ चल रहा है, पर जैसे निकल जाता कुछ भी नहीं चलता है, क्योंकि उसका दोस्त को ऐसा ही हुआ था, अचानक उसको हार्ट रुक गया और लोगों ने कहा मर गया और कफन बॉक्स में डाला, शाम को सेमेट्री में दबा दिया, तो उसकी कोई वैल्यू कोई नहीं थी, तो उसकी तभी कविता उसके अंदर से निकली, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर, बट वो दिखाई नहीं देता है कैसे सब कुछ चला रहा पता नहीं है, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। फिर उसने कहा एक एक आत्मा है तो परमात्मा कोई सितारा है, कोई गॉड भी होगा, तो गॉड कौन है, उसने ढूंढा सितारे को, यहां पर, वहां पर परमात्मा नजर नहीं आया, तो उसको रियलाइज हुआ अंदर से एक सितारा और है, तो इस यूनिवर्स के परली तरफ है, अप अबाउट द वर्ल्ड सो हाई, मत इस वर्ल्ड से भी ऊपर है, यूनिवर्स से भी ऊपर है, लाइक ए डायमंड, फिर भूल गया लिखते रहते, भूल गया, लिखना था अबाउट द स्काई, लिख दिया इन द स्काई, तो चार लाइन बनाई ना उसने। पर एक जो जो थी लंदन में टेल, वो जो थी दो बहनें थी, टेलर बहनें थी, किम टेलर और जॉन टेलर, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने फिर इससे 12 लाइन और जोड़ दी, तो नसीद आइम बन गया है 1806 में, उसके बाद नसीद आइम बन गया। तो मेरे को लाइन ये याद आ गई तभी, मैंने कहा देखो एक सितारा यहां पर है, वो टिमटिमाता है, ट्विंकल करता है, और एक सितारा एवर शाइनिंग स्टार है ऊपर अबाउट द स्काई, वो परमात्मा है, तो साथ वो पावर हाउस है, हम आत्माओं की बैटरी कमजोर हो जाती है, तो हमारी एनर्जी कम होने से हम बीमार, हमारा मन मन दुखी हो जाता है और शरीर में बीमारियां आने लगती हैं, वो एनर्जी कम होती है, तो इसलिए हर इंसान परमात्मा को याद करता है, बैटरी जैसे जैसे मोबाइल तो उस समय नहीं था, तो मोबाइल से बैटरी जैसे चार्ज होती है ना, जैसे या कुछ भी चार्ज करते हैं घर में, तो वो फिर करंट आ जाती है तो बीमारी ठीक होने लगती है, खुशी आ जाती है और बीमारियां कम होने लगती है, दवाइयां भी काम करती है, कुछ परमात्मा की दवा और दुआ दोनों मिलकर काम करते हैं, तब समझ में आई थी। तो जब ही समझ आई तो तब से फिर तो हम समझ आ गए, तो बस तब से हमने एक बात और हमारी वाइफ ने पूछी, क्या हम परमात्मा से बात कर सकते हैं, उसने वहां टीचर बहन से पूछा था, उसने कहा कर सकते हैं, मेरी भी देह इच्छा थी दो बातें, एक तो बीमारियों का राज समझ आ जाए कैसे ठीक होते हैं, दूसरा क्या हम परमात्मा जिसको भगवान कहते हैं बचपन से इसकी पूजा करते आए आरती गाते आए उससे बात हो सकती है क्या। तो मैंने भी कहा हाँ, क्या हो सकता है, सकते हाँ जरूर हो सकता है। तब से फिर हम उस दिन हम गए थे अंदर, तब से हम बाहर आए नहीं है ना, तब से हम अंदर ही हैं, है ना। उस दिन का दिन और आज का दिन हमने कभी भी 4 बजे का मेडिटेशन मिस नहीं किया, ब्रह्म मुहूर्त में मेडिटेशन उठ के, बदले नाइट ड्यूटी में कभी 2 बजे तक 3 बजे भी आए, रात में भी तो भी 4 बजे पौने 4 बजे उठ के बैठ गए, मेडिटेशन किया, आधा घंटा मेडिटेशन किया, कभी मिस नहीं किया, कभी मुरली मिस नहीं की, मुरली परमात्मा के मावक के 7 से 8 जो सेंटर में जाते हैं, कभी मिस नहीं किए, समझ आ गई कि अल्लाह का कलाम है, जैसे कहते कलमा, अभी सुना था कलमा नहीं आता, अच्छा गोली मार दी, है ना, अल्लाह का मतलब परमात्मा के वर्षन क्या, परमात्मा क्या कहता है, परमात्मा क्या समझ देता है, गीता है ना, जो गीता हमारी श्रीमद भगवद गीता, वो क्या कहती है, वो तो लोगों ने मॉडिफाई कर दी, पर ओरिजिनल भगवान ने क्या कहा था, भगवान की श्रीमत डायरेक्शन क्या है, उसी को मुरली कहते हैं, वो रोज हम सुनते हैं, फिर हमें कभी कभी मिस नहीं की कभी भी, उसके बाद 39 साल हो गए लगभग, कभी मिस नहीं की। तो ये जब मैंने समझा ना, ये वाली जो बात थी जब, तो उसने मेरे को बोला ना अब क्या बेचे, तो मेरे को बहुत ही बात टच की, क्योंकि वैसे मैं अकेडमिकली बहुत स्ट्रांग था, तुरंत मैं लाइब्रेरी में गया, तो देखा उन्हीं दिन देखा कि भाई ऐसे जनरल ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स आ रहे थे रिसर्च में, जिसमें बताया जा रहा था कि जो जल्दबाजी करते हैं ना, टाइप ए बिहेवियर होता है, प्रेशर ऑफ टाइम, प्रेशर ऑफ वर्क, प्रेशर ऑफ परफेक्शन, आप सभी टाइप ए है ना, जल्दबाजी मेरे हिसाब से काम होना चाहिए, जैसे मैं कहूं ऐसे ही होना चाहिए, नहीं जल्दबाजी, हरी सिकनेस जिसे कहते हैं, इनको 3 गुना अधिक हार्ट अटैक होते हैं, राइट, जो चिंता करते हैं एंजाइटी क्या होगा, 2 गुना अधिक हार्ट अटैक्स होते हैं, जो गुस्सा करते हैं ना, आप ऐसे कितने लोग जो कभी गुस्सा नहीं किया अभी तक, एक गुस्सा करना कोई नहीं चाहता पर करते सभी हैं, जो गुस्सा करते हैं उनको 3.5 गुना अधिक चांस है हार्ट अटैक आने के, और एक बार गुस्सा करने के बाद अगले 3 दिन तक 3 गुना अधिक चांस रहता है हार्ट अटैक आने का, और 2 बार कर लिया तो 6 गुना हो जाता है, राइट, पर गुस्सा तो करना ही पड़ेगा, भले हार्ट अटैक आए, क्यों गुस्से के वजह काम चलता नहीं ना, चलता है काम, आप में से कितने कितने भाई हैं जिन्होंने अपनी पत्नी को सुधार दिया हो पिछले गुस्सा करके, है कोई ऐसा आप में से कितनी है जी, आप में से कितनी कितनी बहनें माताएं हैं जो अपने पति को सुधार दिया हो गुस्सा करके, सुधारा किसी को, अपने बच्चों को जिन्होंने सुधार दिया गुस्सा करके, हाथ उठाओ, पर करते क्यों हो गुस्सा? हार्ट की बीमारी बढ़ने का सबसे बड़ा कारण ये है। तो ऐसी रिसर्च उन दिनों आ रही थी 95 की बात, 94 उसमें था कि जो अपने जो बहुत उदास हो जाते हैं, बात बात पर उदास हो जाते हैं, उनको 5 गुना अधिक हार्ट अटैक आते हैं। जो सेंसिटिव इमोशन होते हैं उनको भी ज्यादा फीलिंग आती है, उनको ज्यादा हार्ट अटैक आते हैं। जो अपने मन की बातें शेयर नहीं कर पाते उनको भी 3 गुना अधिक हार्ट अटैक आते हैं। राइट। ऐसे डायबिटीज के बारे में कुछ स्टडीज थी, जो बिटरनेस रखते हैं ना मन में, ऐसे मूड के ऊपर कई स्टडीज थी, मूड के, मूड डिसाइड्स अवर फूड। गलत खाना खाते हैं ना तो हमारा, गलत खाना क्यों खाते हैं? मूड के ऊपर आधारित है। सबसे ज्यादा मूड स्टडी में, तो फिर मेरे दिमाग में आया कि नहीं यार, तो ये तो राजयोग मेडिटेशन, जब यहां माउंट आबू आते थे हम लोग 86 के से, तो हम देखते थे लोग यहां बहुत शांत रहते हैं, पांडवन में आते थे बहुत शांत खुश रहते हैं, कभी गुस्सा नहीं करते, हमेशा शांत, पेशेंस, हर बात में पेशेंस लोग होते हैं, सबको एक्सेप्ट करते हैं, एक्सेप्ट ना प्यार, तो कैसा भी हो सबको एक्सेप्ट बराबर पालना करते हैं, बहुत अच्छा। मैंने कहा ये तो स्वभाव बदल जाता है, और खुद मेरा स्वभाव बदल रहा था मेडिटेशन करने से, तो बहुत अच्छी बात है। तो मैंने कहा ये तो भी बदल सकता है, मन में स्ट्राइक हुआ, क्योंकि हम ब्रह्ममुहूर्त में मेडिटेशन करते हैं ना तो क्लियर वॉइस होती है, क्लियर वॉइस ना क्लियर विजन, जो मन में क्वेश्चंस होते हैं ना अपने प्रोफेशन के बारे में, घर की समस्याएं होती हैं, उनके क्लियर आंसर मिल जाते हैं, क्लियर वॉइस समझते हैं ना, क्लियर विजन। मेरे को इस पे आंसर अमृत वेले सुबह मेडिटेशन का तो आंसर मिलते थे, हाँ ये देखो ये प्रॉब्लम ऐसी होती है, ऐसे होता है, इसको हार्ट अटैक क्यों आया, इसने एंजियोप्लास्टी कराई फिर भी हार्ट अटैक क्यों आ गया, इस व्यक्ति को 35 में हार्ट अटैक क्यों आ गया, एक बंदे को 70 में नहीं आया इसको 35 में क्यों आ गया, जबकि एक आदमी जो जिसने कभी शराब नहीं पी, सिगरेट नहीं पी, नहीं बीड़ी नहीं पी, नॉनवेज नहीं खाया, बीपी नहीं, डायबिटीज नहीं, फिर भी इसको हार्ट अटैक आ गया, एक बंदा जो कुछ सब कुछ कर रहा है उसको हार्ट अटैक नहीं आया, इसको ही क्यों आ गया, तो तब कारण समझ में आए। तो मैंने एक आईएमए दिल्ली में, आईएमए दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन, तो वहां उनकी मीटिंग्स होती है, वहां जाके भाषण करना शुरू किया स्ट्रेस एंड हार्ट डिजीज के ऊपर। तो एक मीटिंग थी उसमें 6 मार्च की मीटिंग 95 की, उसमें डीआरडीओ के डॉक्टर्स, कुछ डॉक्टर भी आया हुआ था डीआरडीओ से, कुछ साइंटिस्ट आया हुआ, उसने सुना, सबने सुनकर चले गए, क्वेश्चन पूछे, मैं आंसर किए, उसके बाद वो कहते कहते डॉक्टर साहब ये जो आप कह रहे हो ठीक है, ऐसा हो सकता है कि लोगों की बीमारियां ठीक हो जाए, हार्ट अटैक ठीक हो जाए, ब्लॉकेज खुल जाए, जैसे आपने कहा? मैंने कहा मैंने बोला है तो ठीक ही होगा, क्योंकि मैं उस समय थोड़ा नशे में था, शायद नशे में ना, मतलब रूहानी नशे में था, मेडिटेशन करने होता ना एक नशा रहता है, जो अंदर से सुबह सुबह फीलिंग होती है उसका अलग ही इफेक्ट होता है, कॉन्फिडेंस होता है, वैसे मुलानियन जितने होते हैं बहुत कॉन्फिडेंस वाले होते हैं, तो मध्य मनाजंद पढ़ते हैं ना हम डॉक्टर्स, तैयार होते हैं, वर्ल्ड फेमस है। तो उसने जाके डॉक्टर कलाम साहब को बताया, तो डॉक्टर कलाम साहब ने कहा अच्छा ऐसा डॉक्टर कोई है जो कैसे, कहते हार्ट की बीमारी ठीक हो जाएगी, डायबिटीज ठीक हो जाएगी, तो उसने मेरे को उसका फोन आया कि डॉक्टर साहब वो आपको डॉक्टर कलाम साहब बुला रहे हैं। तो मंगलवार को 9 तारीख को मैं उनसे मिला 1:30 बजे, उससे बात की डॉक्टर कलाम साहब ने, अच्छा ऐसा ऐसा, डॉक्टर साहब तो बड़ी अच्छी बात है, आपको इसे रिसर्च करो, मैं आपके साथ हूँ, मेरा पूरा डीआरडीओ आपके साथ है। तो उसमें डीआरडीओ के चीफ थे, वो PA2 PS2 चीफ रक्षा मंत्री थे उस समय डीआरडीओ के, वो थे। तो उन्होंने कहा कि अच्छा तो मैंने आपने रिसर्च प्रोग्राम बनाया, मैंने मिनिस्ट्री ऑफ उसको दिखाया, तो बहुत अच्छी बात है, आप उसको पूरा एक इंसान को पूरा स्टडी करते हैं पहले और बाद में, एंजियोग्राफी करा के फिर सब टेस्ट करेंगे, देखेंगे मन को भी देखेंगे, ईईजी भी देखेंगे, हार्ट रेट वेरिएबिलिटी भी देखेंगे, सारी बात देखेंगे, सारे हार्मोन्स देखेंगे, तनाव का पहले दिन क्या असर है बॉडी पर, और आखिरी दिन 7वें दिन फिर देखेंगे, फिर 3 महीने बाद देखेंगे। तो उन्होंने पूरा हमने स्टडी बना ली और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को सबमिट कर दिया, और फिर मैं सोचता था कर मेरे को डॉक्टर वहां जो थे ना डॉक्टर साहब जो एस्कॉर्ट के हेड थे कि डॉक्टर साहब यहीं कर लो रिसर्च, मैंने उनको बताया था मैं हम आपको सारी फैसिलिटी दे देंगे, पर मेरे को लगता है यहाँ तो केओस बहुत है, बहुत फास्ट लाइफ है, तो यहां मैं माउंट आबू आता तो यहां बहुत शांति थी, तो कम से कम लिखने की नई बात लिखनी है तो क्लीन स्लेट तो होनी चाहिए ना, पहले ही कंफ्यूज स्लेट हो तो उसमें क्या लिख सकते हैं नई बात। तो फिर मैंने यहां मेरे को दादी जी थे, दादी चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारी दादी प्रकाशमणि, तो मुझे बुलाते थे यहां पर कि डॉक्टर साहब यहां पे आ जाओ अच्छा रहेगा, यहां पे हार्ट के पेशेंट आते हैं, कोई इलाज की फैसिलिटी नहीं है, आप आ जाओगे तो बहुत सुविधा हो जाएगी। मैं दादी मैं तो रिसर्च करने मुझे रिसर्च करनी है। दादी कहते अच्छा ठीक है आ जाओ हम आपको फैसिलिटी देंगे। तो ग्लोबल हॉस्पिटल इतना डेवलप नहीं हुआ था तो मैं आ गया यहाँ पर और आ गया तो तब से ये आने के बाद रिसर्च शुरू की। फरवरी 98 में शुरू हुई, ढाई साल के बाद प्रोग्राम पास हुआ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से। तो फिर जो है रिसर्च शुरू हुई और तब से लेके आज तक लगभग 10,900 पेशेंट्स हमने अभी तक एंजियोग्राफी डॉक्यूमेंटेड लिए और उनकी उनको जो है उनके ब्लॉकेज 100% कैल्सिफाइड ब्लॉकेज भी खुल गए। उनकी लगभग सारी बीमारियां क्योंकि डायबिटीज 30% लोगों को डायबिटीज होती है जिनकी एचबीएमएनसी 13-14 रहता था 300-400 शुगर रहती थी 350 तक भी रहती थी इन स्पाइट ऑफ टेकिंग इंसुलिन 50 यूनिट इंसुलिन भी चल रही है। उसके बाद हफ्ते भर में उनकी इंसुलिन छूट जाती थी क्योंकि हमने हार्मोन सारे स्टडी किए थे इंसुलिन कॉर्टिसोल लेवल सब टेस्ट किए थे स्ट्रेस हार्मोन सब टेस्ट किए हैप्पी हार्मोन्स भी टेस्ट किए थे। तो सब में 7 दिन में इतना सिग्निफिकेंट डिफरेंस होता था बाद में पूछो। तो मैं आपसे सब शेयर करता हूँ कि कैसे ये ब्लड प्रेशर भी ठीक हो गया जिनकी 4-5 गोली खाने वाले आधी गोली पे ठीक हो जाते थे तो कैसे ब्लॉकेज खुल जाते कैसे उनकी ओबेसिटी खत्म हो जाती कैसे उनका लिपिड प्रोफाइल गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता बैड कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता था ट्राइग्लिसराइड कम हो जाते थे फैटी लीवर ठीक हो जाता था और भी मन की बीमारियां ठीक हो जाती थी डिप्रेशन एंजाइटी ठीक हो जाता था। कई लोग बहुत मोटे मोटे भी थे उसमें ओबीस भी थे और एक व्यक्ति मुझे कहता है तो उसकी याद आती है कि उसको तीन बार हार्ट अटैक आ चुका था 40 साल का ही था अभी उसकी 2 लड़कियां थी तो उसको इतना डिप्रेशन था कि बहुत ज्यादा डिप्रेशन था तो बहुत एंजाइटी थी तो इतना डिप्रेशन था उसको वो बार बार सुसाइड कर लेता सुसाइड क्यों कहता मैंने 3 बार सुसाइड करने की कोशिश की डॉक्टर साहब वो बच फिर भी मेरा सुसाइड भी ठीक नहीं हुआ। एक बार उसने पेड़ पर जाकर सीधा लटक गया 140 किलो का था वो डाली नीचे आ गई। एक दिन रात में डिप्रेशन में उसने पंखे पर लटक गया वो पंखा ही नीचे आ गया। एक बार उसने जहर खा लिया वो जहर ही नकली निकला वो बच गया। तो कहता जी मैं जीवन से तंग आ गया अभी क्या करूं मैं। तब वो यहाँ पर हमारे पास तब ठीक हो गया फिर बीमारी ठीक हो गई ब्लॉकेज निकल गए ठीक हो गया। तो ऐसे मतलब सब बीमारियां मन की भी तन की सब ठीक हो जाती थी। तो सुन समझते हैं फिर आगे हम क्या। तो ये माउंट आबू हॉस्पिटल जहाँ पर मैं अप्रैल 95 में मैंने ज्वाइन किया दिल्ली छोड़ के मतलब देखो आप 9 मार्च को डॉक्टर कलाम से मीटिंग हुई और 1 महीने के अंदर मैं दिल्ली छोड़ दी। कैन यू इमेजिन परिवार के साथ दिल्ली छोड़ के सब कुछ मैं सेटल था दिल्ली में बहुत अच्छी प्रैक्टिस थी और उनके हेड ने कहा था डॉक्टर साहब आप कागज पे लिख के दे दो कितने पैसे आपको चाहिए हर महीने हम आपको विल पे यू दैट मच। तो मैंने कहा नहीं पैसे नहीं चाहिए मेरे को जाना है कुछ नया करना है। तो बाद में मिले थे 2007 में मुझे मिले तो कहते डॉक्टर तब मुझे भी मतलब 2006 में मुझे भी प्रेसिडेंट से अवार्ड मिला था और उनको भी मिला था। तो कहते डॉक्टर साहब अभी आ जाओ मेरे पास। मैंने कहा मेरे को नहीं आना आपके पास आपको ही मेरे पास एक दिन आना पड़ेगा। तो तब उनको अभी दिल्ली नीचे एक और ग्लोबल हॉस्पिटल बना है ट्रॉमा सेंटर ग्लोबल हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर आई सेंटर तो वहां पर अब मैं कार्यकर देखो जैसे पिछले 1960 में था 100 में से एक आदमी को बीमारी थी अब धीरे धीरे बढ़ के 2015 की फिगर है डॉक्यूमेंटेड 2 करोड़ लोगों को हार्ट की बीमारी थी और हर हार्ट के एक पेशेंट के पीछे 2 पेशेंट छुपे हुए होते हैं तो लगभग 20 करोड़ लोगों को हार्ट की बीमारी समझ सकते हो इस समय अगर हम कहें तो 10 साल पहले की फिगर्स हैं। और ये बीमारी जो है उसमें से 37 मिलियन माना 60% जो पेशेंट थे ना वो किसके थे 50 ईयर से कम थे मतलब बूढ़े लोगों को बीमारी नहीं पहले बूढ़े लोगों को बीमारी थी अब इट इज नो मोर ए डिजीज ऑफ ओल्ड पीपल। सुनते हो ना 25-30 साल का लड़का डांस कर रहा था मर गया जिम में मर गया चलते चलते मर गया डांस कुछ भी करते करते मर जाते हैं एक की तो शादी होते होते मर गया है ना सुना आपने। तो मतलब किसी को भी कभी भी डेथ हो सकती है और डेथ जो है लगभग उस साल 2015 में 29 लाख लोगों की डेथ हुई थी CAD हार्ट अटैक और स्ट्रोक से और उसमें से 15 लाख लोग 50 के नीचे थे। अभी तो लगभग 36 लाख लोगों की डेथ होती है हर साल और उसमें से लगभग 20 लाख लोग 50 के नीचे होते हैं राइट। तो ये बीमारी इस तरह से बढ़ती जा रही है राइट। तो ये बीमारी जो है अभी इट इज नॉट ए डिजीज ऑफ ओल्ड पीपल इट इज अ डिजीज ऑफ यंग पीपल राइट। तो ये अभी देखो मैं कुछ केस दिखाता हूं आपको। ये व्यक्ति एक रोहतक है ना, रोहतक, रोहतक जानते हो ना, वहां का बंदा है। तो उसको ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, स्मोकिंग, थोड़ा सा हैवी वेट है और लाइफस्टाइल सीडेंटरी लाइफस्टाइल है। तो इसके देखो 2007 में एंजियोप्लास्टी हुई, फिर 2010 में एंजियोप्लास्टी हुई, फिर 2018-14 में उसका बाईपास हो गया। और फिर 2 महीने के बाद इसको तकलीफ, 3 महीने के बाद तकलीफ हो गई, तकलीफ हुई, टीएमटी पॉजिटिव है। तो पैसे वाला था, इंडस्ट्रियलिस्ट है, तो यूएस में चला गया, ह्यूस्टन में गया। उसने देखा सारे ग्राफ्ट बंद हो गए थे, तो उसने फिर वहां जो ग्राफ्ट थे ना उनकी एंजियोप्लास्टी कर दी उन्होंने। और फिर 4 महीने बाद ही फिर तकलीफ हो गई। देखो इसके, देखो ये देख रहे हैं आप, सारे ग्राफ्ट बंद हो गए हैं ना, 100% देखो, 90% को 100% बंद हो गए, और एंजियोप्लास्टेंट भी काम करना बंद कर दिए। तो ये बीमारी ऐसे आ गई। अब दूसरा आदमी एक और भी इसके अपोजिट, ये जींद का है, हरियाणा का ही है। इसको ना ब्लड प्रेशर, डायबिटीज नहीं, स्मोकिंग नहीं करता, और एक्टिव है, आरएसएस का वर्कर है, शाखा में जाते हैं ना, रेगुलर एक्टिविटी, पतला दुबला है, 5'8" का है, किंतु वजन उसका 60 किलो है, तो मोटा भी नहीं है और एक्टिव है बंदा। इसको 2013 में एंजियोप्लास्टी हुई, फिर 14 में दोबारा से एंजियोप्लास्टी, एक स्टेंट, 2 स्टेंट और लग गए, फिर 15 में उसका बाईपास हो गया, और फिर फरवरी में बाईपास हुआ, 2 महीने में फिर तक टीएमटी पॉजिटिव हो गया, फिर हमारे पास आया। अभी कितने साल से, 10 साल हो गए उसको, ठीक बढ़िया एकदम, तकलीफ नहीं, डॉक्टर के पास जाना ही बंद हो गया उसका। ऐसे ही आजकल भारत में क्या है, जो हार्ट की बीमारी होती है ना, डिफ्यूज डिजीज है, डिफ्यूज समझते हैं, डिफ्यूज में ना लंबे लंबे ब्लॉक है, उनकी ना एंजियोप्लास्टी हो सकते हैं, बाईपास। हमारे 100 पेशेंट होते हैं हार्ट के, 54% पेशेंट को डिफ्यूज डिजीज है, इनऑपरेबल है, स्टेंट भी लगा सकते हैं, बाईपास नहीं। विदेश में इस कंपेरिजन में 21% लोग ऐसे हैं, तो दे आर नॉट, 100 में से इतने लोग तो एंजियोप्लास्टी बाईपास हो ही नहीं सकता। तो ऐसे ऐसे एक दिल्ली की है लेडी है, उसके अभी तक 16 स्टेंट लग चुके हैं, एक बाईपास हो चुका है, फिर भी चल नहीं पाती थी, फिर हमारे पास आए। अभी एक बाईपास पेशेंट है, 9 साल पहले बिल्कुल ठीक था, 9 साल पहले हार्ट अटैक आया, अभी 48 साल का है, 48 ईयर्स का, 39 में पहले उसका पहला हार्ट अटैक आया, और तब से लेके आज तक उसको 22 स्टेंट लग चुके हैं। हमारे पास आया तो भी चल नहीं पाता था। तो ये देखो ऐसे ऐसी हालत होती है, बाईपास भी बंद हो जाते हैं। तो कारण क्या है, हमें ब्लॉक होते क्यों है, कि बाईपास इज द आंसर, कि एंजियोप्लास्टी इज द आंसर, है ना। ये चंडीगढ़ का पेशेंट, आपके चंडीगढ़ का ही है, ठीक है, इसको अभी 8-9 स्टेंट लग चुके हैं। तो बेसिकली क्या है, जो एंजियोप्लास्टी बाईपास करते हैं हम लोग, स्टैटिन वगैरह यूज करते हैं, ऐसे बहुत सारे रिसर्च है, सारा सिर्फ पेलेटिव है, पेलेटिव है ना, फॉर द टाइम बींग। जैसे आपको बुखार आया, आपने क्रोसिन खा ली, डोलो खा ली, कितनी देर के बुखार उतरा, 4 घंटे के लिए, फिर बुखार आएगा, मलेरिया है या टाइफाइड जो भी है, वो तो ठीक हो, अपने टाइम पे ठीक होगा, दवाई देनी पड़ेगी। इट डज नॉट एड्रेस द रूट कॉज। रूट कॉज क्या है, जीन्स, जो माता पिता से बीमारी के जीन्स मिलते हैं, डायबिटीज का भी जीन होता है, ब्लड प्रेशर का भी जीन होता है, हार्ट की बीमारी का भी जीन होता है। तो जीन्स है ना हमारे, हर बीमारी के, हमारा फैटी लीवर बनता है तो उसका भी जीन है। तो इसके लिए मेंटल स्ट्रेस एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, डाइट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर, एक्सरसाइज बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट, और नींद, प्रॉपर नींद, समय पर सोना, समय पर उठना, और टबैको, लोग तंबाकू खाते हैं, अल्कोहल लेते हैं। और आज का इलाज सिर्फ 1-डायमेंशनल है, सिर्फ बॉडी का इलाज है। बॉडी हम कब बनते हैं, मरने के बाद। और इलाज किस चीज का करते हैं हम लोग, सिर्फ बॉडी का। हम डॉक्टर्स को ट्रेनिंग है क्या, किसी डॉक्टर को ट्रेनिंग ही नहीं है मेडिकल कॉलेज में, ना उसको बॉडी के बारे पढ़ाते हैं, मन के बारे को पढ़ाता ही नहीं है, आत्मा के बारे को पढ़ा ही नहीं है। जबकि आज 100% बीमारियां किसके कारण है, मन के कारण, साइकोसोमेटिक है, स्ट्रेस रिलेटेड है, इतना एनसीडी कहते हैं ना, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। और आज जबकि सब जानते हैं कि आज हार्ट की बीमारी क्या है, साइकोसोमेटिक है, डायबिटीज भी साइकोसोमेटिक है, ब्लड प्रेशर भी साइकोसोमेटिक है, हाई कोलेस्ट्रॉल भी साइकोसोमेटिक है, फैटी लिवर भी साइकोसोमेटिक है, मोटापा भी साइकोसोमेटिक है। तो लाइफ से जीवन शैली की, गलत जीवन शैली की बीमारी है। देखो एक व्यक्ति यूएस का है ये, इसकी वजह से सारी आर्टरीज ब्लॉक, इनऑपरेबल था, फिर हमारे पास आया तब से ठीक हो गया। अब ये प्रूव हो चुका है कि हमें इतनी भी एंजियोप्लास्टी करा लें, स्टेंट करा लें, तो स्टेंट डू नॉट प्रोलॉन्ग अवर लाइफ, हमारी उम्र नहीं बढ़ती है स्टेंट लगवाने से, रादर हमें और इससे हार्ट अटैक भी प्रिवेंट नहीं होता, अदर टेंडेंसी हार्ट अटैक ही बढ़ जाती है। एक बार स्टैंड अप वालों हर साल आपको जाना ही पड़ेगा, एक दो साल में तो जाना ही पड़ेगा डॉक्टर के पास, पक्के ग्राहक बन गए। क्योंकि मैं देखता था वहां पे, तो मैंने कहा हम कर क्या रहे हैं, फायदा करें नुकसान कर रहे हैं, तो पता लगा हम नुकसान कर रहे हैं लोगों का, तब मैंने छोड़ दिया, मैं माउंट अबू आ गया। और बाईपास सर्जरी से पता लगा 5 साल पे हमारी 3% लोगों की थोड़ी फायदा होता है ऐसा लगा, क्योंकि तो 10 साल फॉलो किया तो पता लगा किसको फायदा ही नहीं होता बाईपास। बाईपास इज ओनली टाइम पास है ना, एंजियोप्लास्टी इज ऑल्सो टाइम पास। रूट कॉज तो मेरे अंदर पैदा, मैंने ब्लॉक अंदर से आया कि बाहर से आया, अंदर से आया ना, कारण तो मेरे अंदर था, तो वो कारण का निवारण तो मैंने किया नहीं, फिर दोबारा ब्लॉक आएगा ना, स्वभाव तो बदला ही नहीं है ना। तो ठीक, इसलिए पता लगा कि अगर हम लाइफ स्टाइल बदल दें तो ये खाली हार्ट की बीमारी नहीं बट सारी बीमारियां खत्म हो जाती है, ऐसा ही रिसर्च हुई। क्योंकि कितने आजकल शॉपिंग मॉल में क्या होता है, बाई वन गेट वन फ्री ऐसा होता है ना, कभी कभी होता है दिवाली के आसपास होता है। और इसमें तो यही सब, जीवन शैली बदल लो, जीने का ढंग बदल लो, तो आपका खाली हार्ट की बीमारी नहीं, सारी मन और तन की सारी बीमारी ठीक हो जाती है। क्योंकि जब आप जीवन शैली बदलते हो तो बॉडी का हर अंग पे असर पड़ता है ना, राइट। ये तो क्या बताया कि भारत अमेरिका में 20 लाख लोगों को हार्ट अटैक आता है, 13 लाख की एंजियोप्लास्टी कर देते हैं, 4.5-5 लाख की एंजियोप्लास्टी कर देते हैं, क्योंकि भारत में 70-80 लाख लोगों को हार्ट अटैक हर साल आता है, और हम सिर्फ 3-4 लाख लोगों की एंजियोप्लास्टी कर पाते हैं, 1 लाख लोगों को बाईपास कर सकते हैं। तो सबका कर सकते हैं क्या, वो भी आंसर नहीं है, दैट्स नॉट द। और ये बताया था, इसका नोबेल प्राइज मिला था मेडिसिन में 2009 में, तो पता लगा कि हमारी जीन्स होते हैं हमारे हर बीमारी के, डायबिटीज का भी, हार्ट का भी। और मेडिटेशन करें हम प्रॉपर ढंग से, ब्रह्म मुहूर्त में मेडिटेशन करें, प्रॉपर डाइट लें, लो फैट हाई फाइबर वेजिटेरियन डाइट खाएं, बैलेंस डाइट खाएं, और समय पर सोए, समय पर उठ जाएं, एज पर अंदर की जो घड़ी है बायोलॉजिकल क्लॉक। तो हमारा जीन एक्सप्रेशन क्या होता है, हंड्रेड्स ऑफ जीन्स का जीन एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है। क्या होता है उसमें, जो बीमारी पैदा करने वाले जीन्स हैं वो टर्न ऑफ हो जाते हैं, और अच्छे जीन्स, प्रोटेक्टिव जीन्स टर्न ऑन हो जाते हैं। तो जेनेटिक बीमारी का भी बहाना खत्म हो जाता है, इफ यू डू द थिंग्स इन द राइट वे। ओके, तो प्रैक्टिकल मॉडल क्या है, इसको कैसे ठीक करते, कैसे इस हेल्दी हार्ट हैप्पी माइंड हेल्दी बॉडी बनाने का तरीका क्या है। ये रिसर्च जो हमने जो शुरू की थी ग्लोबल हॉस्पिटल माउंट आबू और डिफेंस DRDO के साथ मिलके, और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने इसको स्पॉन्सर किया था, और इसमें 3 हमने हॉस्पिटल लिए थे, मेडिकल कॉलेज दिल्ली में जीबी पंत हॉस्पिटल, और बॉम्बे में JJ ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल ग्रांट मेडिकल कॉलेज, और अहमदाबाद में BJ मेडिकल कॉलेज, और साथ में सिविल हॉस्पिटल UN मेहता इंस्टीट्यूट कार्डियोलॉजी। रिसर्च 27 साल में फरवरी 98 में शुरू हुई, 95 में इसकी विजन हुई थी मॉर्निंग मेडिटेशन के बाद, और फिर मैंने बताया जो सारी बात शेयर कर ली आपकी। और ये रिसर्च हमने 2011 में पब्लिश की, 8 साल का फॉलोअप साथ में प्रेजेंट किया, और हमने इसको कहते हैं माउंट आबू ओपन हार्ट ट्रायल, सितंबर 2011 में पब्लिश की थी, और जुलाई 2013 में हमको बताया गया। US में एक रिसर्च बॉडी है जो सारे विश्व की लगभग 2 मिलियन रिसर्चेज होती है, 20 लाख रिसर्च हर साल होती है टोटल मिला के मेडिकल के फील्ड में, तो उसमें से आपको बताया टॉप 20 रिसर्च गिनी जाती है, पहली 20 जिसको सबसे ज्यादा लोगों ने देखा, डॉक्टर्स पब्लिक ने देखा। तो ये रिसर्च बताया गया हमको 2013 जुलाई में कि ये रिसर्च जो है टॉप 20 स्टडीज में नंबर 1 रही है सारे वर्ल्ड में, और लगातार हर 3 महीने हमको 3 महीने पर रिपोर्ट आती रही, अभी भी नंबर वन है, और नवंबर 2015 तक नंबर 1 पे रही। ये मैं समझता हूँ भारत की एकलौती स्टडी है जो इतना समय नंबर 1 पे रही, सबसे ज्यादा लोगों ने इसको देखा, क्योंकि इसमें जो कुछ बातें हमने ऐसी बताई थी जो यूनिक बातें हैं। जो फिर 2017 में अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन को जानते हैं ना, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन को जानते हैं, जो अमेरिका की हार्ट की जो डॉक्टर्स की एक बनी बॉडी, सारा वर्ल्ड उसको डायरेक्शंस को मानता है। तो उन्होंने एक पेपर, रिसर्च पेपर पब्लिश किया, साइंटिफिक स्टेटमेंट पब्लिश किया, मेडिटेशन एंड कार्डियोवैस्कुलर डिजीज रिस्क रिडक्शन, कि हार्ट अटैक आने के चांसेस मेडिटेशन से कैसे कम होते हैं। तो उन्होंने कहा ये रिसर्च जो माउंट आबू ओपन हार्ट ट्रायल है ये बढ़िया तरीका है खाली हार्ट की बीमारी ठीक करने का, बल्कि इसका अर्थ इसके रिस्क जो है, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, मोटापा, स्मोकिंग, इंसुलिन रेजिस्टेंस होना, ये सारे जो फैक्टर्स हैं उन सबको कम कर देता है। पर उन्हें रिकमेंड किया कि इसकी और बड़ी रिसर्च की जाए, तो हमने चालू रखी रिसर्च। तो हम बताया ना पहले तो सर हमारे जो पब्लिश किए थे 508 ही पेशेंट थे, पर अभी तो हमारे पास 11,000 पेशेंट है, 10,800 के लोग पेशेंट हैं। तो ये जो है 26 साल की रिसर्च हमने अब जो इसका फाउंडेशन एक नीचे हॉस्पिटल बना रहे हैं इसी के लिए अलग से, मोदी जी ने उसका फाउंडेशन स्टोन बनाया डाला है वहां पर, हमारे पास जमीन पड़ी है लगभग 40-50 एकड़ जमीन है हॉस्पिटल की, तो उसमें हमने एक इसका हम बना रहे हैं, उसको आरोग्यम के नाम से बना रहे हैं, अकेडमी फॉर ए हेल्दी एंड हैप्पी वर्ल्ड, जैसे ये ना अकेडमी फॉर ए बेटर वर्ल्ड ज्ञान सरोवर, ऐसे वहां पर बना रहे हैं हम अकेडमी फॉर ए हेल्दी एंड हैप्पी वर्ल्ड। तो सारे वर्ल्ड से जो भी बीमारियां हैं मन और तन की उनके ऊपर रिसर्च करेंगे, जीन्स पे भी रिसर्च करेंगे, और हम सब पेशेंट सारे वर्ल्ड से आएंगे, उसमें हम उनका अपने पास 7 दिन का प्रोग्राम होता है, हस्बैंड वाइफ को साथ में रहते हैं, दोनों को साथ बुलाते हैं, हस्बैंड वाइफ को साथ बुला के उनको फिर उनके सारी चीजें टेस्ट करेंगे देखेंगे। तो आपको जैसे पता है कि हमारी जो मन है ना, मन के 4 एस्पेक्ट होते हैं, टीम कहते हैं अंग्रेजी में उसको, थॉट्स, इमोशंस, एटीट्यूड्स एंड मेमोरीज। नेगेटिव टीम होती है ना तुम्हारे हाइपोथैलेमस में, दोनों ब्रेन का कंट्रोल रूम हाइपोथैलेमस है जहां आत्मा की सीट भी है, तो हमारे उसमें ऐसे केमिकल निकलते हैं इसको न्यूरोपेप्टाइड कहते हैं, 1 सेकंड से भी कम समय में हमारी बॉडी के सेल्स पे पहुंच जाते हैं, हमारे रिसेप्टर्स होते हैं, और हमारी जो लाल तार माना सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिव हो जाता है, जिससे हार्ट रेट बढ़ती, बीपी बढ़ता, अब फाइट और फ्लाइट के तैयार हो जाते हैं, स्ट्रेस हार्मोन निकलते हैं, और उससे आपके अंदर फीलिंग ऑफ वेलबींग की बजाय फीलिंग ऑफ डिस ईज पैदा होती है, सैडनेस होती है, एनर्जी खत्म हो जाती है। इसकी बजाय आप पॉजिटिव सोचते हो तो, पॉजिटिव टीम होती है तो आपकी सेल्स, ब्रेन की सेल्स में, बॉडी की सेल्स में हार्मोन निकलते हैं, कौन से वाले, जिसको हम कहते हैं एंडोर्फिन्स, नेचुरल पेन किलर, मॉर्फिन होती है ना, अंदर भी मॉर्फिन निकलती है जो आपको सारे पेन खत्म कर देती है, खुशी अंदर आ जाती है, और एनकेफेलिन निकलते हैं, वो उस मॉर्फिन से होना बहुत पावरफुल होते हैं बाहर की मॉर्फिन से, और अंदर बहुत फीलिंग ऑफ वेलबींग आती है, हैप्पीनेस आती है, पूलिंग ऑफ एनर्जी। अफीम खाने के बाद लोग क्या करते हैं, बहुत ताकतवर, अपने आप को ताकत नाली में पड़ा हो ना, तभी कहते हैं मैं राजा हूं, है ना, ऐसा फील होता है उसको। तो हमारी बॉडी में 8 अंग है, 8 अंग, तो जो अंग जन्म से कमजोर होता है उसका उस पर असर पड़ता है, जो हमारे नेगेटिव विचार बनते हैं, नेगेटिव भावनाएं, नेगेटिव वृत्ति और स्मृति बनती है, उसका असर वो लगातार बम्बार्डमेंट होती रहती है उसी अंग पे। इसे हार्ट है तो हार्ट पे होगा, किसका लंग्स है तो लंग्स पे होगा, किसका लीवर है तो लीवर पे होगा, किसका किडनी है तो किडनी पे होगा, किसी घुटने है तो घुटने पे होगा। 8 अंग, कोई अंग जन्म से कमजोर, माँ के गर्भ से कमजोर बना है, और वो मेटे क्या बोलते हैं, कंपनी में माल बन के आता ना, क्या कहते हैं उसको, मतलब प्रॉब्लम डिफेक्टिव माल है, वो अंग बना ही कमजोर है जन्म से, उसके ऐसे कुछ ग्रह कहो आप उसको जो भी कहो, पर जन्मपत्री में लिखा रहता था हॉरोस्कोप में, ये बच्चा उदर रोग, पेट के रोग से पीड़ित रहेगा, ये बच्चा हृदय रोग से पीड़ित रहेगा, ये बच्चा इससे पीड़ित होगा, तो टारगेट ऑर्गन कहते हैं उस पर उसका अटैक होता है, वो इससे में वो बीमारी हो जाती है। पर एक सेब सड़ जाता है तो क्या होता है, पेटी में एक सेब सड़े तो क्या होता है, आसपास ऐसे एक अंग खराब होता है, हार्ट खराब हुआ तो उससे और भी अंग, डायबिटीज होगी यहाँ तो उससे सारी और भी बॉडी के अंग खराब होंगे, ठीक है, इस तरह से बीमारियां होती है। तो ये हमारा इसमें छोट टाइम नहीं इतना, ये हमारी हार्ट है ना, हार्ट की 3 आर्टरीज होती है ना, और उसकी नॉर्मल आर्टरी ऐसी होती है इधर तरह देखना जो, और ब्लॉक होती है ऐसे दिखती है, क्योंकि हार्ट सारी बॉडी को खून देता है तो हार्ट को भी खून चाहिए, तो ये जो बड़ी आर्टरी लाल वाली देख रहे हैं, इसकी जड़ से एक आर्टरी निकलती है, 3 आर्टरीज निकलती हैं, और जब बच्चे होते हैं ना तब हम, तो हमारा हार्ट की आर्टरीज इलास्टिक होती है, जैसे रबड़ होता है लचीला, मोड़ सकते हो, फैल सकता है, खींच सकते हो ना, तो 6 गुना सप्लाई बढ़ सकती है जब बचपन में हम, इससे बच्चा कितना दौड़ लेता है, कितना हाथ पर चलाता है, थकता नहीं है, और हमारा क्या होता है, आप इतना दौड़ के दिखाओ, नहीं दौड़ सकते, क्योंकि हम जैसे जैसे टेंशन में आते हैं ना, जल्दी चिंता गुस्सा होता है ना, टेंशन बढ़ती है। बचपन है ना, बचपन का गीत सुना आपने, बच्चे मन के सच्चे, सारी जग की आंख के तारे, ये वो नन्हे फूल हैं जो भगवान को लगते, जो जो इनकी उम्र बढ़े, क्रोध बढ़े, नफरत घेरे, लालच की आदत घेरे, बचपन इन बातों से हटके अपनी उम्र गुजारे, ऐसा था ना, कहीं देखो कापी के पीछे लिखा रहता था ना, था याद, याद है मेरी उम्र के लोगों को पता होगा है ना, यंग लोगों को नहीं पता, आजकल कापी के पीछे कुछ लिखते नहीं है ना। तो ये इलास्टिक आर्टरी 6 गुना सप्लाई बढ़ती है, तो जैसे से हम स्ट्रेस में आएंगे तो हमारे हार्ट की आर्टरी प्लास्टिक जैसी बनती जाती है, स्टिफ होती जाती है, और साथ साथ कोलेस्ट्रॉल जमना शुरू हो जाता है, गलत खाना, गलत सोचना, गलत बोलना, गलत सोना, गलत उठना, गलत सैर ना करना, तो ये फिर, और ये ऐसी आर्टरी, अब डिमांड बढ़ती तो है, हम पैदल करते हैं, दौड़ते हैं, वजन उठाना पड़ता है, तो डिमांड बढ़ती है, गुस्सा आता है, चिंता आती है, तो डिमांड बढ़ती है तो सप्लाई नहीं बढ़ती, इससे छाती में दर्द होता है, घबराहट होती है, पैल्पिटेशंस होते हैं, दिल थोड़ी दिल काली होती है, अंदर से पंजाबी बोलते हैं दिल काली काली, तो ऐसे हो रहा है ना, तो वो ऐसा फील होता है, राइट, तो वो जो है इसलिए छाती में दर्द होता है। 70% जब आर्टरी बंद होता है ऐसा फील होने लगता है, और इसकी बजाय अगर हमें, अगर जो है डर, इसके डर चिंता गुस्सा होता है तो आर्टरी क्रैक हो जाती है, क्योंकि डर चिंता गुस्से केमिकल निकलते हैं, ऐसे हार्मोन निकलते हैं, स्ट्रेस सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिव हो जाता है, तो वो रिलैक्सेशन सिस्टम बंद हो जाता है, तो फिर हमारी आर्टरी ऐसे ऐसे क्रैक हो जाती है, क्रैक होकर क्लॉट बनता है, सडनली 100% बंद हो जाती है, तो हार्ट अटैक हो जाता है। तो यही हमें समझना है, कैसे हमारी आर्टरीज बचपन में नॉर्मल है, देख रहे हैं, फिर थोड़ी थोड़ी ब्लॉक होने लगती है, जो हम गलत खाते हैं, गलत 5 साल की उम्र से आर्टरीज ब्लॉक होना शुरू होती है, धीरे धीरे ब्लॉक 70% 80% होता है, फिर हार्ट अटैक आता है, फिर डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर बलून डाल के, वायर डाल के, उस पर कैथेटर डाल के, बलून डाल के अंदर स्टेंट छोड़ के आ जाते हैं, इसको स्टेंटिंग कहते हैं, परमानेंट इलाज नहीं है, फिर देखो आप चेंज नहीं करेंगे तो उस स्टेंट के आगे ब्लॉक आ जाएगा, पीछे ब्लॉक आ जाएगा, तो बंद हो जाए, बेशक आप मेडिकेटेड स्टैंड लगवा लो तो भी बंद हो जाएंगे। ये जो है बाईपास है, स्टैंड देखो बंद हो गया ना, देख रहे हैं इधर, देख रहे हैं स्टैंड बंद हो गया, अंदर से स्टैंड है, बाहर अंदर फिर कोलेस्ट्रॉल जम गया, बाईपास होता है, इसमें हम बाईपास क्या करते हैं, ब्लॉक के आगे एक ग्राफ्ट लगा देते हैं, छाती के अंदर से आर्टरी, हाथ से ली, पैर से नसें ली, आगे लगा देते हैं, तो हम तो ब्लॉक करने में एक्सपर्ट है, ये तो आर्टिफिशियल आर्टरीज है, इसको तो बहुत जल्दी ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है, तो ये इलाज ऐसे जैसे पेड़ को ऊपर से काट दिया, हर साल काटते हैं ना पेड़ को, ब्रांचेस काट ताकि फिर बरसात के पहले काटते, फिर हरी भरी हो जाती है, तो इसलिए बाईपास इज नॉट, डज नॉट ट्रीट द रूट कॉज, एंजियोप्लास्टी डज नॉट ट्रीट द रूट कॉज, इसलिए बार बार तकलीफ होती है। तो हमने जो रिसर्च शुरू की, इसमें कार्डियोलॉजिस्ट भी थे और एंडोक्रिनोलॉजिस्ट भी थे, क्लिनिशियन भी थे, फिजियोलॉजिस्ट जो मेडिटेशन सिखाने वाले भी थे, टीचर मैंने भी थी, न्यूट्रिशनिस्ट भी थे, फिटनेस एक्सपर्ट भी थे, और सबने मिलकर, साइकोलॉजिस्ट भी थे, फिजियोलॉजिस्ट भी थे, हम सबने मिलकर DRDO से मिलकर, डॉक्टर कलाम की पूरी टीम, 7 लोग आते थे वहां की टीम, 7-8 लोग आते थे, साइंटिस्ट आते थे दिल्ली से, यहीं पर प्रोग्राम करते थे, पहले तो हॉस्पिटल में करते थे माउंट आबू में, फिर बाद में शांति वन में चले, यहां भी एक प्रोग्राम किया था हमने। तो ये प्रोग्राम जो हमने किया, इसको हम 3D हेल्थ केयर लाइफस्टाइल प्रोग्राम कहते हैं, 3D मीन्स 3-dimensional, विच एड्रेसेस नॉट ओनली द बॉडी बट ऑल्सो द सोल, माइंड एंड द बॉडी, तीनों को एड्रेस करता है। तो हमने ये माउंट आबू ओपन हार्ट ट्रायल पब्लिश किया, और फिर हमने एक रिसर्च और शुरू की, रैंडमाइज, वो ओपन स्टडी थी ये, हमने रैंडमाइज कंट्रोल, इसमें 2 ग्रुप बनाए, एक ग्रुप को हमने राजयोग मेडिटेशन के द्वारा स्ट्रेस को मैनेज किया, डाइट एक्सरसाइज, प्रॉपर डाइट, प्रॉपर एक्सरसाइज, प्रॉपर स्लीप एंड प्रॉपर मेडिकेशन दी, और कंट्रोल ग्रुप को हमने कहा कि आप मेडिटेशन नहीं करो, उनको सिखाया कि स्ट्रेस से क्या नुकसान होता है, आप जो भी करते हो, मंदिर जाते हो, प्रार्थना करते हो, नमाज पढ़ते हो, जो भी करते हो और ध्यान से करो और लगन से करो, पर जल्दी चिंता गुस्सा नहीं करो, रोज अपने मन की बातें शेयर कर लो। ये माता जी देखो कहां पाकिस्तान में गई है क्या, ये वाले अलर्ट होके बैठो, क्या बॉर्डर पर जाके आए क्या, अच्छा मिसाइल को रोक के आ गई माता जी, देखो तो सुना आपने। तो ये जो है हमारी इनको हमने देखा, इस कंट्रोल ग्रुप मतलब इसको भी 7 दिन का हमने ट्रेनिंग दी, उसको भी 7 दिन की ट्रेनिंग दी, पर वो उनको कहा था जो मर्जी करो, मुसलमान भी थे, मुस्लिम भी थे उसमें, हमने कहा नमाज पढ़ो रेगुलर, 5 बार नमाज का 10 बार पढ़ो, पर गुस्सा नहीं करना, चिंता नहीं करना, उदास नहीं होना, सरदार भी थे उसमें, गुरुद्वारे जाते थे, हमने गुरुद्वारे क्रिश्चियन में थे, वो थे क्रिश्चियन थे ना जो, हमने कहा आप रेगुलर उसमें जाओ, चर्च में जाओ और रेगुलर ध्यान से सारी बातों को समझो, दोबारा से पढ़ लो अपनी बाइबल, उनको कहा तुम कुरान बार बार पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, जो लिखा है उस पर एक्यूरेट फॉलो करो, और इनको राजयोग मेडिटेशन के द्वारा एक प्रॉपर टेक्निक से समझाया। तो इनका सेम प्रोग्राम था, सब कुछ सेम रखा था, साइकोलॉजिकल एनालिसिस भी किया। पहले दिन तो हम साइकोलॉजिकल एनालिसिस ही करते हैं, कितनी जल्दी चिंता गुस्सा को नाप सकते हैं। फिर सातवें दिन फिर ऐसे दोनों ग्रुप को कहा गया और दोनों को बकायदा 7 दिन की ट्रेनिंग दी गई। बाकी सबको सेम था, सिर्फ हमने क्या डिफरेंस रखा राजयोग मेडिटेशन का। और एक साल बाद दोबारा एंजियोग्राफी कराई गई तो 80% लोग ऐसे थे जिनकी 2 आर्टरीज या 3 आर्टरीज ब्लॉक थे, मल्टीपल ब्लॉकेजेस थे। सिर्फ 20% पेशेंट ऐसे दोनों ग्रुप में थे जिनको सिंगल वेसल एक ही ब्लॉक था। और इस पूरी स्टडी को हमने पूरा एक्यूरेट एनालाइज किया, इंडिपेंडेंट लोगों से एनालाइज कराया, हमारे साइंटिस्ट हमारे जो एनालाइज करने वाले थे DRDO के थे, ICMR के थे, सबसे एनालाइज हुआ। और फिर एंजियोग्राफी को भी बकायदा कोडिंग कर दिया ताकि इसको पता लगे पहली कौन सी है दूसरी कौन सी है किसकी है ये भी नहीं पता लगे। और देखा कि लोग जो 50 कदम 100 कदम भी नहीं चल नहीं पाते थे वो 3-4 किलोमीटर चलने शुरू हो गए, मतलब 550% उनकी एक्सरसाइज कैपेसिटी बढ़ गई। हार्ट की पंपिंग जो है लगभग 10% एवरेज बढ़ गई। हार्ट अटैक आता ना तो हार्ट की पंपिंग 60% होती है, घट के किसी 20 हो गए, किसके 30 हो गए, किसके 35-40 हो गए। फिर जब उन्होंने दोबारा एंजियोग्राफी कराई तो पता लगा बढ़ गई। और जो मेडिसिन खाते थे ना ब्लड प्रेशर की, डायबिटीज की, एंजाइना के लिए दवाई कम हो गई, सिग्निफिकेंटली कम, लोगों की छूट गई दवाइयां बहुत। और कोलेस्ट्रॉल, गुड कोलेस्ट्रॉल कम बढ़ गया, बैड कोलेस्ट्रॉल कम हो गया, ट्राइग्लिसराइड घट गए। नॉर्मली जो दवाई खाते ना हम कोलेस्ट्रॉल कम करने की, उससे बैड कोलेस्ट्रॉल कम होता है, गुड भी कम हो जाता है। बैड कोलेस्ट्रॉल कम होता है पर साथ गुड भी कम हो जाता है। गुड जरूरी है बॉडी के लिए, HDL कहते हैं ना उसको। तो ये पर इसमें क्या था, उसमें हम स्टैटिन रेगुलर यूज नहीं करते थे, इसमें देखा कि नहीं उनकी इस मेडिटेशन से, इस लाइफस्टाइल से एक पैकेज है, पूरा एक पैकेज है, उससे आपकी बीमारी कम हो जाती है। और 93% पेशेंट्स के ब्लॉकेज खुले। कुछ मैं दिखाता हूं आपको, स्टेज की लाइट ऑफ कर देना भाई, देखो दिखाई दे रहा आपको, ये इस तरफ एक 80% आर्टरी ब्लॉक है, दोबारा कराई देखो खुल गया ब्लॉक ना, ये देखो इतना लंबा ब्लॉक है, इसकी एंजियोप्लास्टी बाईपास नहीं हो सकती, इसको डिफ्यूज डिजीज कहते हैं जो मैंने बताया 54% लोगों को ऐसी। तो देखिए ब्लॉक खुल गया है, देखिए इवन 100 हमारे स्टडी में 50 ब्लॉक ऐसे थे जो 100% कैल्सिफाइड ब्लॉक थे, पत्थर जैसे बन गए थे, तो हमें विश्वास नहीं था खुलने वाले हैं, इसलिए हमको गिनाइन था स्टडी में। पर टू अवर सरप्राइज 50 में से 29 ब्लॉक खुल गए थे, मतलब हमने उनको उस पर देखा, वो देखेंगे तो पता तो लगता ही ना, जब कोई डॉक्टर एंजियोग्राफी पे देखते हैं तो पता लगेगा। देखिए 100% ब्लॉक खुल गया, और देखिए मल्टीपल ब्लॉक सारे खुल गए हैं ना, 80% और 90% ब्लॉक खुल गया है ना। देखो इस पेशेंट को 2 बार हार्ट अटैक आया, हार्ट की पंपिंग 60%, इसकी 30% रह गई थी। दोबारा एंजियोग्राफी कराई तो हार्ट की पंपिंग 45%, मतलब नई दीवारें बन गई। देखो ये 80% ब्लॉक तक खुल गया। इसी के हार्ट की पेशेंट की एंजियोग्राफी में पंपिंग पावर 20% रह गई थी, दीवारें मर गई थी, दोबारा कराया तो 50% हो गई, हार्ट की दीवारें नई बन गई, जो साइंस के हिसाब से ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। स्टेम सेल थेरेपी जो 10-12 लाख रुपए लगते हैं उसमें भी 5% भी बढ़ती है। तो राजयोग मेडिटेशन के द्वारा आप क्या अचीव कर सकते हो, देखो 100% ब्लॉक खुल गया है, दिखाई दे रहा है, कंट्रोल ग्रुप में ब्लॉक बढ़ गए, बल्कि हमको सेम डाइट सेम एक्सरसाइज देके तो भी ब्लॉक बढ़े, कारण मन है, क्योंकि हमने 10,000 से ज्यादा लोगों की स्टडी की है, साइकोलॉजिकल एनालिसिस किया, एंजियोग्राफी दोबारा किया, तो हमें पता लगा कौन सी मन की विचार बदले तो उनकी कौन कौन सी ब्लॉक खुली। तो नाउ वी कैन कोरिलेट ईच ब्लॉक विद थॉट पैटर्न्स, मतलब एंजियोग्राफी देख के हमको समझ में आता है कि इसके बीच सोच कैसी है, ये आदमी सोचता क्या है, इसका व्यवहार कैसा है, घर में कैसे रहता है, ऑफिस में कैसे रहता है, तो उसके शक्ल ही हम बना ले मन में बन जाती है। जब मेरे पास लोग आते हैं ना, अभी आने वाले हैं 14 तारीख से हार्ट का प्रॉब्लम शुरू होने वाला है, 14 से 20, तो हार्ट के पेशेंट्स आएंगे तो शक्ल उसकी, मैं तो एंजियोग्राफी देख, मैंने शक्ल तो देखी नहीं होती, फोटो तो नहीं आती, तो मेरे को देख के उस चलने के ढंग से, उसके चेहरे के एक्सप्रेशन से पता चलता है ये बंदा इसकी एंजियोग्राफी ये बंदा ये है ना, तो पता लग जाता है कि इसका, क्योंकि वो व्यवहार पता लग जाता है ना उसका एंजियोग्राफी देख के, जैसे लोगों को हाथ की रेखा देख के बताते हैं ना, ऐसे ही बिना एंजियोग्राफी से उसकी उसकी शक्ल चाल ढाल समझ में आते, व्यवहार कैसा है उसका। तो अभी ये हमने इतनी, मतलब इसको हमको पता लग गया, इसके डाटा बेस हमारे पास है, हम कर रहे हैं। तो ब्लॉकेज आपकी किसी भी चीज से, ECP से या एंजियोग्राफी या लौकी का रस और क्या होता है अर्जुन की छाल या किलेशन थेरेपी से कभी नहीं ब्लॉकेज खुलते, कोई भी चीज दुनिया की आपकी ब्लॉकेज नहीं खुल, प्राणायाम से, शवासन से, सुदर्शन क्रिया से ब्लॉकेज नहीं खुल सकते। कारण मन है। जब तक आप मन को ठीक नहीं करेंगे, अपने सोचने का ढंग ठीक नहीं करेंगे, तब तक आप ब्लॉकेज नहीं कर नहीं सकते। ऐसे डायबिटीज है, डायबिटीज का कारण आपका मन है। जब तक मन को ठीक नहीं करेंगे तब तक वो डायबिटीज खत्म नहीं हो सकती। सुना देखो एक भाई साहब पीछे नींद से सो रहे, अभी उठे उठ गया ठीक, तो सुना आपने, मैं इतना बोर कर रहा हूं कि आपको नींद आ गई, सुना आपने। तो कैसे हमारी ब्लॉकेज, देखो ब्लॉकेज बढ़ जाते हैं। देखो ये देखो एक पेशेंट और है, इसकी 100% कैल्सिफाइड ब्लॉकेज है, दिख रहा है आपको, दिख रहा है कट ऑफ है। दोबारा की तो देखो पूरी की पूरी आर्टरी खुल गई। कैसे खुली? तो ये आपके अंदर वो पावर है, असंभव भी संभव कर सकते हो। डायबिटीज को ला इलाज कहते हैं लोग, है ना, पर उसको ठीक कर सकते हो, नॉन डायबिटिक बन सकते हो, आपकी जो मोटापा है उसे ठीक कर सकते हो। यदि आपको पानी पे नहीं रखना है, आपको 3 बार खाना खाना है, 2 बार फल खाने हैं, 5 बार खाना खाना है, तो भी आपका वेट कम हो जाता है। तो इट इज नॉट द अमाउंट ऑफ डाइट, इट इज द क्वालिटी ऑफ लाइफ डाइट। आपको क्या खाना है वो आप बदलेंगे, क्वालिटी बदलेंगे, प्लस मन को बदलेंगे। सबसे बड़ा कारण मोटापे का क्या है? आपकी सोच, सोच को, क्योंकि आपके हार्मोन से बीमारी होती है ना। तो देखिए ये हमारे साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है, टाइप ए बिहेवियर ठीक हो गया, एंजाइटी ठीक हो गई, डिप्रेशन ठीक हो गया, एंगर ठीक हो गया, जीने का ढंग बदल गया, अपने मन की बातें शेयर करना शुरू कर दी, सेंसिटिव इमोशन नेचर बदल जाती है। कंट्रोल ग्रुप में इतना परिवर्तन नहीं हुआ, लोगों ने डाइट, उनका डाइट एक्सरसाइज बदल गया, है ना, उनका एक्सरसाइज स्मोकिंग छूट गई, शराब छूट गई, अफीम, लोग ऐसे भी थे अफीम खाने वाले भी थे, अफीम की भी छूट गई। ये देखिए इधर इससे देखा है, ईईजी करते हैं ना हम लोग, आंखें खोल के करते हैं तो बीटा रिदम होती है, 13 से 18 बार ऐसे होता है ब्रेन के रिदम। और जब जल्दीबाजी करते हैं, चिंता करते हैं, तो वो 18 से 19 से 30 बार हो जाता है, बहुत फास्ट चिंता। और गुस्सा करते हैं, उदास होते हैं, तो हमारी और तेज बढ़ जाती है। तो उसको हम, ये बीटा रिदम की डिफरेंट टाइप्स है। और हम मन शांत कर लेते हैं, आंखें बंद करके ऐसे बैठ जाते हैं, तो हमारी अल्फा रिदम हो जाती है, 8 से 12 बार। जब मेडिटेशन करते हैं ना आप, तो आपकी रिदम कम होती जाती है, उसे शांति कहते हैं। और शांत होते तो उसे प्यार कहते हैं। शांति मीन्स बीइंग इन द प्रेजेंट, पास्ट को फुल स्टॉप लगा के अपने वर्तमान में सत्य में टिके, परम सत्य से कंबाइन काम करो, उसको शांति, 90% थॉट कट जाते हैं, राइट, उसे शांति कहते हैं। प्रेम माना आपके घर में आसपास जो भी लोग हैं, दुनिया में जो भी लोग हैं, उनको दिल से स्वीकार करो, गाली देने वाले को भी और आपकी महिमा करने वाले को भी, कर सकते हो, और उनकी बराबर पालना करो, गाली देने वाला, अपमान करने वाला, और आपकी महिमा करने वाला, आपकी सेवा करने वाला, सबको, दोनों को बराबर केयर करो, इसको प्यार कहते हैं। हाँ, वही तो उसमें था, 7 दिन के, ये उसी प्रोग्राम में सिखाते ना, जो 7 दिन का जो प्रोग्राम होता है उसमें सिखाते। तो वो उसमें क्या होता है, व्हाट इज लव, आरबी को बोलते हैं आई लव यू बहुत करते हैं आजकल लोग, है ना। तो लव यू क्या होता है, हमारे टाइम में कोई लव यू बोलता नहीं था, मेरी पत्नी ने मेरे को आज तक लव यू नहीं बोला, है ना, है ना, है ना, बट शी इज द बेस्ट पर्सन फॉर मी। तो पर वो, पर मुझे मतलब प्यार का मतलब आई एक्सेप्ट यू एज यू आर अनकंडीशनली, तुम गंदे हो, अच्छे हो, जो भी हो, आई एक्सेप्ट यू, दैट इज लव। प्यार की परिभाषा पता क्या, अनकंडीशनल, डिग्निफाइड, रेस्पेक्टफुल एक्सेप्टेंस एंड केयर फॉर ईच एंड एवरी ह्यूमन बींग ऑन द प्लेनेट। हर आत्मा को, विश्व में हर आत्मा को दिल से, सम्मान से स्वीकार करो, हर रोल में। वो गाली दे रहा तो भी बहुत अच्छा है, और महिमा कर रहा तो भी। इसको भगवान को प्यार का सागर कहते हैं। वो आतंकवादी को उतना ही प्यार देता है जितना एक हस्पताल बनाने वाले को देता है, डॉक्टर को देता है, भगत को देता है। उसको सब हवा पानी सब कुछ, बुद्धि भी देता है। तुझे बम मारना है, कोई बम बेशक को कहता है बम मारना हो, मैं तैयार होकर जाता है, पहले भगवान के दरबार में जाएगा, कहता हाँ मैं जा रहा हूं, आप मेरे साथ ही रहना, मैं नहीं, और वो सब कुछ कहता है, लगता है उसको मेरे को भगवान कह रहा है जाओ जाओ बहुत अच्छा तुम सब सक्सेस। पर भगवान जानता है जैसा कर्म वैसा फल, तो इसको बोलते प्यार का सागर। डाकू डाकू डाका डालने जाता हो भी भगवान के पास जाता है नहीं जाता, तो ऐसा प्यार देते हो सबको, ऐसा प्यार चाहिए। हटकाट की मारी क्यों बढ़ रही है, क्यों लोगों के पास प्यार नहीं है। तू ऐसा है तुझसे बात नहीं करनी, तुम ऐसे करते हो मैं तुमसे बात नहीं करनी, इसलिए हार्ट अटैक हो रहे हैं जल्दी उम्र में हो रहे हैं, राइट। इसे दो व्यक्ति के बीच में प्यार क्या दिखाते हैं, बीच में ब्रेन दिखाते हैं, कभी फेफड़े दिखाते हैं, लीवर दिखाते हैं, किडनी दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं, हार्ट। क्यों दिखाते हैं भाई हार्ट, हार्ट को ऐसा प्यार चाहिए, राइट। किसका लड़ाई हो तो बीच में दिमाग दिखाना चाहिए, ब्रेन नहीं, लड़ने वाला है ब्रेन नहीं, सुना आपने। तो चार से छह, चार जो होते चार, फोर टू सेवन, उसे लवफुल रिदम कहते हैं, थीटा रिदम कहते हैं। और हैप्पी एंड ब्लिसफुल रिदम क्या होती है, चार से कम हो तो। एबीसीडी कहते हैं, एपीसीडी आत्मा परमात्मा कनेक्शन एंड ड्रामा, रिदम चार से कम है ना। जिसने जो कुछ हो गया अभी तक सुफ्रुस्टॉप लगा के अपने को आत्मा समझ के परमात्मा से अपनी बैटरी चार्ज करते काम करते रहे, इसको बोलते शांति। किस क्या कहते हैं इसको, शांति, इसको प्यार, शांति को, प्यार को, राइट। तो ये जितना जितना और कम होता जाए ना, दो को आनंद कहते हैं, एक को आपकी बैटरी डिस्चार्ज होने लगती है, मैं आत्मा बस और एक परमात्मा से कम्बाइन, तो इसको बैटरी चार्ज होने। तो ये हमारी ईजी होती है। वो देखो एक हफ्ते में बैटरी कितनी अच्छी हो गई, देख रहे हैं आप, अल्फा रिदम बढ़ गई, शांति की रिदम बढ़ गई, बीटा कम हो गई, थीटा बढ़ गई, डेल्टा भी बढ़ गई, सिर्फ एक हफ्ते में मेडिटेशन करो तो। ये हमने साइंटिफिकली प्रूव किया, और हमने नहीं किया, डीआरडीओ को साइंटिस्ट ने आके प्रूव किया। और ये आंख खोल के सबसे अच्छा होता है, आंख बंद करके आंख दोनों करा के देखा तो अल्फा रिदम बढ़ती जाती है 7 दिन में, और बीटा रिदम कम होती चली जाती है, 7वें दिन कम हो जाती है। अल्फा रिदम अविद आईज ओपन काम करते करते बड़ी रहती है, ये नहीं कि आंखें बंद करके, हमने आंखें बंद करके काम ही नहीं, हम चलते फिर, क्योंकि चेंज ऑफ कॉन्शियसनेस है ना, मैं आत्मा हूं। तो ये थीटा रिदम पहले एक हफ्ते में बढ़ जाती है, मतलब प्यार की फीलिंग सबके प्रति एक हफ्ते में आप एक्सेप्ट करने लगते हो, घर में शांति प्यार आ जाता है, झगड़े खत्म, और थीटा रिदम भी आनंद जीवन में आनंद और खुशी बढ़ जाती है, राइट। तो ये जो है, ये हमने की लाल तार हरी तार, जो सिंपैथेटिक, हमारे अंदर सिंपैथेटिक सिस्टम होता है, पैरासिटिक रिलैक्सेशन सिस्टम होता है, फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स सिस्टम होता है, स्ट्रेस रिस्पॉन्स। तो जब ये आदमी पहले दिन हमारे पास आए तो हमारे दिन लड़ने के लिए तैयार थे, लाल तार एक्टिव थी, हरी तार एकदम स्लो थी। 7 दिन में मेडिटेशन लर्न कर लेते हैं तो क्या होता है, लाल तार कम हो गई, हरी तार एक्टिव हो गई, माना अब आपको कुछ भी टेंशन आती ना, यू फेस इट विद ए रिलैक्स माइंड। टेंशन तो हमारे घर में सबके पास आती है, सब आदमी के पास आती है, कोई व्यक्ति ऐसा टेंशन नहीं आया, चैलेंज हम डेली आते हैं, घर में भी आते हैं बाहर भी आते हैं, पर हम कैसे कैसे फेस करते हैं, पहले से टेंशन में आके बिहेव करते हैं, और अभी हम क्या करते हैं, रिलैक्स होकर फेस तो हम करते हैं, फेस तो हम भी करते हैं, आप भी करते हैं, पहले मैं भी करता था, चिढ़ जाता था, इरिटेट हो जाता था, अभी मैं इरिटेट नहीं होता, कुछ भी करे है ना, और फिर और 6 महीने पे, 1 साल पे और अच्छी हार्मनी, दैट मीन नाउ यू आर रिलैक्स्ड, यू फेस द चैलेंज विद अ रिलैक्स्ड स्टेट ऑफ माइंड, राइट। ये आप राजयोग मेडिटेशन सीख जाते हैं, ओके। स्ट्रेस हार्मोन भी देखे हमने, एपिनेफ्रिन, एडिन लेवल्स, नॉरिन लेवल्स 7 दिन ही कम हो जाते हैं, और हमने ये भी इंसुलिन, सीरोटोनिन, गुड एंडोर्फिन, नेचुरल पेन किलर अंदर जो निकलते हैं 7वें दिन ही बढ़ जाते हैं। तो पेन आपकी कैसी भी पेन से, दर्द, माइग्रेन, आपकी हार्ट की दर्द, घुटनों की दर्द, अपने आप ही कम फीलिंग हो जाती है, लगभग ठीक हो जाती है। फिर हमने ये कॉर्टिसोल लेवल, सुबह से हम जो सोचना शुरू करते हैं उठते ही, तो हमारे एडिनल ग्लैंड से कॉर्टिसोल निकलना शुरू होता है। अगर हम 100% टीम पॉजिटिव रखें 8 बजे तक, 8 बजे उसकी पीक होती है, तो टीम पॉजिटिव रहेगी तो क्या होगा, आपका कॉर्टिसोल बैलेंस में निकलता है, तो सारा दिन शांति, प्यार, खुशी बनी रहती है, एफिशिएंसी बहुत अच्छी रहती है, यू आर मोर इफेक्टिव। और अगर आप सुबह उठते ही मोबाइल देख लो, टीवी देख लो, तो क्या हो जाएगा, कॉर्टिसोल बहुत ज्यादा निकल जाता है, 8 बजे उसकी पीक ज्यादा निकला होता है, तो सारा दिन जल्दी, चिंता, गुस्सा, इरिटेबल, झगड़ा, एफिशिएंसी एकदम डाउन हो जाती है। सारा दिन लगे रहते हो तो भी थके, तो काम थक भी जाते हो, काम भी कुछ नहीं होता है, एफिशिएंसी नहीं है। बच्चे आपने अच्छा खाना बनाया, बच्चे को पसंद नहीं आता है, आप चिढ़ जाते और ज्यादा, पति को पसंद नहीं, गुस्सा, पति को भी हालत यही होती है। क्या ख्याल है, राइट और रॉन्ग? अरे सारा दिन पति काम करके आता है, पत्नी को उसके उसको उसके उसे वेलकम करने दिल नहीं करता, सारा दिन वो पत्नी को देख के भी इरिटेट हो जाता है। क्या क्या शादी क्यों की थी आपने? जीवन साथी बनने के लिए ना, एक दूसरे की मदद बन क्या जाते हो? जीवन हाथी, यानी हाथी मेरे साथी, नहीं नहीं। अब हाथी को पालना कितना मुश्किल है ना? सोचो, तो ऐसे आज हर पति को लगता है मेरी पत्नी कैसे बन गई, और पति को पत्नी को लगता है मेरा पति कैसे बन गया। नहीं, एक दूसरे को बात ही नहीं शेयर नहीं कर सकते ना, चिड़के बोलते हैं, रिस्पेक्टफुल बिहेवियर है क्या? बीमारी क्यों? इसलिए तो बीमारियां होती है ना, राइट? तो ये, और हमने इंसुलिन लेवल करके देखे, डायबिटीज बहुत बढ़ रही है ना, 50-60 यूनिट इंसुलिन रोज लेते तो भी शुगर 300-400 रहती है, और हमने देखा कि 7 दिन में इंसुलिन हट भी जाती है और इंसुलिन लेवल भी कम हो जाता है। मतलब पहले करेंसी क्या थी आपकी 1947 में? $1 ₹1 बराबर थी, राइट? एक पाउंड में ₹2 का था, और फिर अभी क्या हो गया, ₹85 का एक डॉलर हो गया ना। अभी क्या होता है, अगर मान लो आज आपका डॉलर, आपका रुपया और डॉलर बराबर हो जाए तो फिर क्या होगा? क्या होगा बोलो, कितनी क्या होगा? तो ये फर्क पड़ता है, एक हफ्ते में ही हो जाता है। आपकी अपनी इंसुलिन क्या होती है, इट बिकम मच मोर इफेक्टिव। तो हाँ जी, वही मतलब मैं तो एग्जाम्पल देके बता रहा हूं कि अभी स्ट्रेस के कारण हमारा कॉर्टिसोल इतना ज्यादा निकल जाता है तो हमारी शुगर कंट्रोल में नहीं आती। कितनी इंसुलिन खा ले लो तो भी, गोलियां भी कितनी मर्जी खा लो तो भी ठीक नहीं होती। और एक हफ्ते में आपकी करेंसी बदल गई, इंसुलिन इज करेंसी, लाइक करेंसी, तो आपकी डायबिटीज अपने आप ही कंट्रोल में आ जाती है। जो 350-400 रहती है, तीसरे दिन तो पता रहता है वो शुगर 80 आ गई उसकी बिना दवाई चेंज के, फिर इंसुलिन कम करनी पड़ती है। चौथे दिन और कम हो गई, चौथे दिन और, पांचवे दिन और, इंसुलिन छठे दिन हट गई और पेशेंट बेटर हो गए। तो मतलब कम इंसुलिन में भी शुगर कंट्रोल, हमारी शुगर कंट्रोल होती है। चलिए, ये तो मैं बेसिक बता, ये तो मैंने आपको बताया ना, एक सीरियस पेशेंट हॉस्पिटल में आता है, नहीं बचा पाता, क्या होता है, मर गया तो डेड बॉडी बन गई, इसका ऑर्गन ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो इंसान क्या है, 3 एनर्जी का कंटिन्यूम है, स्पिरिचुअल, मेंटल, फिजिकल। और ये खुशी की बात है, खुशखबरी है हमारे लिए, कह सकते हैं कि आत्मा और थोड़ी सी सेल्स है यहाँ पे, मेमोरी सेल्स, वो नहीं बदलती, बाकी सब कुछ बदलता है। कितने दिन में? 99.8% सेल्स 3 महीने से 2 साल में बदल जाती है। हमारे हार्ट के अंदर की लाइनिंग पूरी 3 महीने बदल जाती है। 3 महीने में जो आर्टरी ब्लॉक है ना आपकी, अगर आप 100% पॉजिटिव टीम कर दें तो क्या होगा, आपकी अंदर की दीवार बिल्कुल नई बन जाएगी, इसमें ब्लॉकेज होगा ही नहीं, राइट? है ना? ऐसा ही लोगों को हुआ जब एंजियोप्लास्टिक एंजियोग्राफी कराई, दोबारा तो डॉक्टर को समझ जाए कि पहले वाली एंजियोग्राफी कहां गई, ये पेशेंट का ब्लॉक कहां गया। तो अब ये आपके ऊपर, तो टीम वही रहे, विचार वही रहे, भावना, वृत्ति और स्मृति बदल जाए पक्की, ऐसे आपकी स्किन पूरी बदल जाती है, नाखून बदलते हैं ना 3 महीने बदल जाते हैं, पेट की लाइनिंग पूरी बदल जाती है 3 महीने, आपका हार्ट भी पूरा 2 साल में बदल जाता है, बोन्स भी लगभग 2 साल में नहीं आ जाती, सारी पूरी बोन बदल जाती है, पूरी बॉडी नहीं, आपके विचारों के ऊपर है, आपकी भावनाओं के ऊपर है, आपकी एटीट्यूड क्या, वृत्ति स्मृति क्या, उसके ऊपर है। और ये एक बहुत अच्छी खबर है कि हमारे 80,000 लगभग हमारी बॉडी 80,000 अरब कोशिकाओं से बनी है, उसमें से 8 अरब कोशिकाएं हर साल हर दिन बदल रही है। कितनी? 800 मतलब 1% सेल्स एक दिन हर दिन बदल रही है। तो आपकी सोच, आपकी भावना कैसी है, वो सेल्स नहीं बदल रही है, आपका बॉडी 1% बदल रही है रोज, किस आधार पे? आपके विचारों के ऊपर, भावनाओं के ऊपर। आपके विचार भावना नेगेटिव गलत है तो क्या होगा, वो सेल्स क्यों, वो बनती नहीं है, रिकवरी नहीं, इसलिए आप बूढ़े जल्दी होते हो, फिर बाल रंगते हो ना, यंग लगने की कोशिश करते हो ना, ऐसे यंग हो जाते हैं क्या? तो अच्छे उसमें से क्या, हर सेल में लगभग 1 लाख रिएक्शन होती है। कितनी रिएक्शन होती है 1 सेकंड में? 1 लाख। 80,000 आपको प्रारंभ में कितनी होंगी? 1 लाख। कि तो ये सिर्फ 100,000 रिएक्शन के टॉक्सिन को एक सेकंड से भी कम समय बॉडी वॉश कर लेती है, किंतु जल्दबाजी करते हो तो 120,000 रिएक्शन होती है, चिंता करते हो 140,000 होती है, गुस्सा करते 160,000 होती है, जोर से करते हो 180,000 होती है, और उदास हो जाते तो 200,000 हो जाती है। और बॉडी के टॉक्सिन निकलते नहीं है फिर सेल में से, इससे हम बीमार होते हैं, सेल जल्दी मर जाती है। कारण ये है आपकी हमारी बीमारी का। यस, इसे डॉक्टर्स बढ़ रहे हैं, बीमारियां कम हो रही है ज्यादा हो रही है? हॉस्पिटल बढ़ रहे हैं डॉक्टर, तो बीमारी कम हो रही ज्यादा हो रही है? डॉक्टरों को ज्यादा बीमारियां हो रही है, पता है आपको? डॉक्टर आम आदमी की एवरेज 70 साल उम्र है और डॉक्टर की एवरेज उम्र 60 साल है, 10 साल पहले मर जाते हैं बेचारे, इलाज करते करते पहले मर जाते हैं। वो जानते हैं कि तो उनका समझ को करते नहीं है, फॉलो नहीं कर पाते खुद, विल पावर नहीं ना, तो ये समझ। तो हमारी इसका इलाज क्या है? इसलिए मेडिटेशन। मेडिटेशन क्या है? मेडिटेशन करते हो तो शांति आती है, थॉट स्पीड कम हो जाती है, तो 80,000 रिएक्शन हो जाती है, तो हर सेकंड 20,000 रिएक्शन के टॉक्सिन वॉश हो रहे हैं। इसलिए कहते हैं पीस हील्स, लव माना वी स्टार्ट एक्सेप्टिंग ईच अदर, परिवार में बाहर सबको उनकी बराबर पालना करने लगते हैं, तो उसको प्यार कर, तो रिएक्शन 60,000 हो जाती है, तो 40,000 टॉक्सिन बाहर निकल रहे हैं। खुशी क्या है? जो मिला उसमें संतुष्ट हो, आपके भाग्य में जो मिला, कहते समय से पहले नहीं, भाग्य से ज्यादा नहीं, संतुष्ट है तो खुशी है। नहीं चाहते कि और सभी मुकेश अंबानी बनना चाहते हो? नहीं, मेरा भी पर्सनल जेट हो, नहीं मेरी बड़ी वाली कार हो, कौन सी वाली कार, BMW हो ना, उसके पास है मेरे पास क्यों नहीं है? खुशी वहां से मिलती है क्या? नहीं मिलती है, अंदर की खुशी। तो 40,000 रिएक्शन हो जाती है जल्दी जल्दी, तो इसे कहते हैं हैप्पीनेस हील्स, लव हील्स, ब्लिस माना आनंद, गोइंग बियॉन्ड, आन माना बंधन, अंध माना मुक्त, बंधन मुक्त स्थिति, आत्मा परमात्मा के लव में लवलीन हो जाती है, ऐसी स्थिति 20,000 रिएक्शन होती है, इसलिए कहते ब्लिस हील्स। तो ये अंदर की एनर्जी, हीलिंग एनर्जी है, राइट? करनी है कि नहीं करनी? कि बाजार से लानी है? चंडीगढ़ में दुकान है क्या? चंडीगढ़ में बहुत दुकान है, कितनी दुकान है बहन जी? है ना दुकान है बहुत, चंडीगढ़ में बहुत दुकान है, मतलब बाबा के जो सेंटर है ना, राजयोग सेंटर, वो सब दुकानें हैं बाबा की, वहां फ्री में मिलती है ना, ठीक है। तो स्ट्रेस मैनेजिंग का कोर्स क्या है, मैं बस पूरा कर देता हूँ 2-3 मिनट में। तो स्ट्रेस को प्रेशर डिवाइड बाय कोपिंग एबिलिटी, ये रेशियो एक से अधिक होता है तो आप स्ट्रेस महसूस करते हैं। प्रेशर अंदर के होते हैं, मन के, बॉडी के, बीमारियां हैं, मन की स्थिति है, शांति, कई लोग चिड़चिड़ के बहुत ज्यादा करते हैं, गुस्सा बहुत करते हैं, तो ये इसको बदल सकते हैं आप। बाहर के प्रेशर घर में बनती नहीं है, बाहर नहीं बनती, तो बदल सकते हो। जब रेशियो एक से अधिक तो आप स्ट्रेस महसूस करते हैं, किंतु इसको बदलने के लिए क्या चाहिए? कोपिंग एबिलिटी ना, आत्मिक शक्ति कैसे बढ़ेगी? वो बढ़ती, कोई दवाई नहीं बनी इसके लिए, कोई ऑपरेशन नहीं बना है, एक गोली खा लो चलो आपकी इन आत्मिक शक्ति बढ़ेगी, नहीं, इसके लिए एक ही विधि है, वो योग है, राइट? योग कैसे कहते हैं? योग मीन्स कनेक्शन, कनेक्शन विद व्हाट? ट्रूथ, सत्य से जुड़ने को योग कहते हैं। और ट्रूथ क्या है? ट्रूथ इज एटर्नल, बियॉन्ड बर्थ एंड डेथ, सत्य जो जन्म मरण से परे है, शाश्वत है, सदा ही अविनाशी है, और ट्रूथ इज अनचेंजेबल, अपरिवर्तनशील है। हम किससे जुड़े हुए थे बचपन से? किससे जुड़े हुए थे? अपने को देह समझा, माता पिता को देह समझा, तो देह से जुड़े हुए थे, देह एटर्नल है क्या? अच्छा फिर रोल से जुड़े थे, ये माँ, ये बाप, ये पति पत्नी और ये सब, बिजनेसमैन, पैसे वाला, गरीब आदमी, तो ये कोई एटर्नल है क्या? बदलने वाली चीज है। तो जिससे हम जुड़े थे वो तो अनस्टेबल था, इनसिक्योरिटी पैदा किया बचपन, इसी से तो हम बीमार हुए, इसलिए हमें सत्य से जुड़ने की आवश्यकता है। तो व्हाट इज द ट्रूथ ऑफ ह्यूमन बीइंग? दो शब्द से बना, ह्यूमन प्लस बीइंग, ह्यूमन मतलब ह्यूमस, लैटिन वर्ड है, विच मीन्स सॉइल, और बीइंग मीन्स लाइफ फोर्स, विच मीन्स सोल, तो सॉइल एंड सोल, इसमें से मैं क्या हूं? सोल। क्या स्पेलिंग में क्या फर्क है? आई एंड यू। जब बॉडी कॉन्शियस बनते हो तो उसमें आप क्या, आईनेस माइनस आती, मैंपन मेरापन आता है, ईगो अटैचमेंट आती है, झगड़ा उससे होता है, राइट? और यू मीन्स यूनिवर्सल, वसुदेव कुटुंबकम, वीनेस आती है तो वेलनेस आती है। तो जब आउटर सेल्फ आता है तो तीन एस्पेक्ट है उसके, बॉडी, रोल, मटेरियल, तीनों अनस्टेबल है, इससे डर पैदा होता है, और डर से ही काम विकार पैदा होता है, लस्ट पैदा होती है। अपनी देखे तो इसलिए जिम में जाते ना, सिक्स पैक बॉडी बनाते हैं, मसल्स बनाते हैं, नहीं क्यों बनाते हो? तो फिर अपने मसल्स को देख खुश होते हो, मेरे दे बॉडी बहुत अच्छी है ना, तो अपनी बॉडी की तरफ आकर्षण होता है ना, इसको ये भी काम विकार है। किसी और की तरफ आकर्षण होना ये भी काम विकार है, इन्फेचुएशन हो जाती किसी से तो ये काम विकार है, लस्ट है ये। क्रोध भी डर से पैदा होता है, मेरी एरिया में इंटरफेयर कर रहा है, कर रही है, गुस्सा आता है। ग्रीड भी क्या है? डर से पैदा, ज्यादा इकट्ठा कर लो, उसका भी अपने पास ले आओ। मोह भी क्या है? डर से पैदा होता है, जो मेरे आसपास के लोग मेरे पास ही रहे। अहंकार भी डर से पैदा होता है, जो इकट्ठा कर लिया ना दे बस व्यक्ति वस्तु, उसका फिर कोई इसमें मेरे उसका अहंकार हो जाता है। इसी से हमारा जल्दबाजी का बिहेवियर, जल्द टाइम पे बिहेवियर क्यों बनता है? मेरी हर चीज एक्यूरेट टाइम पे होनी चाहिए, ईर्ष्या द्वेष भी इससे, कंपटीशन कंपैरिजन भी इससे, और आलस्य अलबेलापन भी इससे बनता है, और दूसरों के अवगुण देखना। देखो एक लड़का लड़की ना शादी से पहले क्या होते हैं, वो लड़के को वही लड़की अच्छी लगती है, बस कहते इसके अंदर बहुत गुण है, गुण सारे इसमें ही भरे पड़े हैं, और लड़की को वो लड़का ही अच्छा लगता है, कहते इसमें सब बहुत गुण भरे पड़े, कहते हंसों का जोड़ा है। अब शादी कर तो 3 महीने के बाद पूछो अब क्या हाल है, वो कहती गलती हो गई बहुत, नहीं इसमें तो क्या, इसमें रह नहीं सकते इसके साथ। वो लड़के को पूछो क्या हाल है, कहता जी बस बहुत बड़ी गलती हो गई, है ना। अभी क्या हो गए, पहले हंसों का जोड़ा था, क्या बन गया, बगुले का जोड़ा बन गया। जब अपने को आत्मा समझ के बात करते हैं तो सबके गुण दिखाई देते हैं, और जैसे ही हमको देह अभिमान आता है, मैं पति हूं, मैं पत्नी हूं, रोल कॉन्शियस बनते हैं, तो फिर क्या गुण दिखाई देते हैं, बॉडी कॉन्शियस आ गए, रोल कॉन्शियस बन गए ना, फिर बगला, फिर कीड़े नजर आने शुरू हो जाते हैं। बगलों क्या दिखाई देता है, बहुत सारे मोती पड़े हो, दो कीड़े पड़े हो तो कीड़े दिखाई देंगे, मोती नजर नहीं आते। और हंस को क्या दिखाई देता है, बहुत सारे कंकड़ पड़े हो, दो मोती पड़े, मोती नजर आता है। तो हमारा ये व्यवहार जो है ना, अवगुण दर्शन सबसे बड़ी बीमारी है, सारे घरों में क्लेश होने की, हर कार्यस्थान पर क्लेश होने की। तो ये स्वभाव, इससे हॉस्टिलिटी बनती है, इससे शक अनुमान पैदा होता है, चिंता भय पैदा होता है, इसी को तनाव कहते हैं। जब आदमी तनाव में होता है तो रॉन्ग फूड खाता है, रॉन्ग फूड, रॉन्ग मूड, रॉन्ग फूड। जब अंदर कड़वाहट महसूस होते मीठा खाते हैं, जब डायबिटीज होने के बाद भी खाते हैं, फ्राई अंदर ड्राई होते हैं तो बाहर से फ्राइड खाते हैं मुंह से, अंदर बोरिंग महसूस करते हॉट एंड स्पाइसी खाते हैं, ऐसे सोच से ज्यादा मूड स्टडी में। हम गलत खाना खाते क्यों है? जो वो आदमी टेंशन में रहता है उसको नींद नहीं आती है, सोने जाता 10 बजे, नींद आती है 1 बजे, है ना, फिर उठता 8 बजे, फिर एक्सरसाइज करेगा, और तनाव में रहता तो नींद नहीं आती, गोलियां नींद की गोली खाएगा, चाय कॉफी से मूड ठीक करता है, फिर सिगरेट बीड़ी से ठीक करता है, और शराब से ठीक करता है। ऐसा आदमी सदा ही बीमार रहता है, राइट, कोई बीमारी भी हो बढ़ेगी। इसके बाद सोल कॉन्शियस हो जाओ तो क्या होगा, इनर सेल्फ कॉन्शियस हो तो क्या हो जाएगा, क्या होगा बताओ, डर खत्म हो गया, और शांति, जो आत्मा का क्या 7 एनर्जी आ गई ना, फुल प्रूफ सिक्योरिटी, सत्य की समझ आ गई, ABCD समझ आ गई, A फॉर आत्मा, बोलो A फॉर, B फॉर मतलब परमात्मा, P फॉर परमात्मा, क्या बोलो, C फॉर कनेक्शन संबंध, और D फॉर ड्रामा, जो हुआ क्यों हुआ, जो मैंने बोया था वही काट रहे हैं ना, मैंने बबूल बोया था तो क्या काटना पड़ेगा, बबूल, आम बोया था तो आम ही काटना पड़ेगा, नहीं, जो भी आज मुझे दुख अभी तक जो है, जो भी परेशानियां, दुख जो मेरे साथ अभी तक जो कुछ हुआ, जो हो रहा है, मेरे अपने किए कर्मों का फल है। भगवान हमको ये बताते हैं, इससे इसको फुल स्टॉप लगा के अपने सत्य में टिक के परम सत्य से कंबाइन हो जाओ, फिर कर्म करो। तो ये ABCD समझिए, सत्य की समझ आ गई, फिर उससे पवित्रता आ गई, मैं अपने को आत्मा समझ के दूसरे को आत्मा समझ के व्यवहार करता हूं। कर्मों का हिसाब किताब पता है क्या आपको, किसी व्यक्ति से आपने 100 साल तक 10 रुपया उधार लिया, वापिस नहीं कर पाए, इस समय वो आपका क्या बन के आएगा, या तो कोई बिजनेस पार्टनर बन के आएगा, या आपका पत्नी बन के आएगा, पति बन के आएगा, बच्चा बन के आएगा, नहीं, वो 10 रुपया उसको वापस करना पड़े, 100 साल का ब्याज कितना हो गया, कितना हो गया, हमने हिसाब लगाया था 4,18,35,040 रुपया हो गया। अब वो भी देना पड़ेगा, इसलिए बच्चे को पढ़ाते हो 1 करोड़ 2 करोड़ खर्च किया, 3 करोड़ खर्च किया, खुश होता है क्या, कुछ नहीं होता है, तो पापा अभी तो 1 करोड़ और बाकी है ना, 4 करोड़ खर्च कर दो फिर 18 लाख तो बाकी है ना, खुश नहीं होता, इसलिए कोई संबंध में खुश रहते हैं क्या, ये पति पत्नी क्यों बनते हैं आपस में, बच्चे क्यों आते हैं हमारे पास, वो वाले कर्मों का हिसाब किताब चुकतू कराने के लिए, और हम दुखी हो जाते हैं, इसने मेरे को ऐसे कर दिया, इसने मेरे को ऐसे कर दिया, इसने। यही तो भगवान सिखा रहा है कि बच्चे कर्मों का हिसाब किताब है। किसको 2 गाली दी 100 साल पहले, कितनी गाली खानी पड़ेगी जन्म में बोलो? कहते हैं 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है, और हिसाब किताब तो पूरा करना पड़ेगा। नहीं तो गाली कितनी, 10,000 गाली खानी पड़ेगी, रहना भी वही पड़ेगा, सुबह शाम गाली खाओगे और नहीं रहना पड़ेगा। अभी रहते हो नहीं रहते हो? रहते हो। ये कर्मों का हिसाब किताब है। कंप्लेन नहीं करनी होती, बंधुआ मजदूर नहीं। तो पवित्रता, ये पवित्रता आ जाती है कि ये भी आत्मा अपना पार्ट प्ले कर रही है, मैं भी ये पार्ट, मुझे सहन करके समान है, राइट? इसको पवित्रता कहते हैं, राइट? शांति माना वाच को फुल स्टॉप लगा के, प्यार माना एक्सेप्टेंस, लव हैप्पीनेस माना कंटेंटमेंट, और खुशी आनंद माना लवलीन बियॉन्ड। इससे 8 शक्तियां आ जाती है। तो 7 एनर्जी आएगी सतो प्रधान, इसी के जब इस तरह कनेक्ट रह के करते हैं ना, तो वैल्यूज आ जाती है, एकाग्रता आती है, दृढ़ता आती है, संतुष्टता, हर्षित मुक्ता आती है, चेयरफुलनेस आ जाती है। तो इसको कहते हैं स्ट्रेस फ्री। ये आदमी खाने के लिए जी रहा था, इधर इस वाला बॉडी कॉन्शियस वाला खाने के लिए जी रहा है, सुबह नहीं खाएगा, दोपहर शाम को पार्टी इकट्ठी करेंगे, नहीं? और ये आदमी जीने के लिए खाता है, फ्रूट्स खाएगा, सलाद खाएगा, सामने रखे होंगे तो भी नहीं खाएगा, खराब चीज नहीं खाएगा। याद में नींद बहुत अच्छी आती है, समय पर हम शाम 10 बजे सोते हैं, 3:30 उठ जाते हैं, मेडिटेशन भी कर लेते हैं, सैर भी कर लेते हैं। मैं आपके पास आया ना, सैर भी करके आ गया, नाश्ता भी करके आ गया, पता है आप? नीचे से आया 1 घंटा से गाड़ी में, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत है ना, और हमें कभी ना चाय चाहिए, ना कॉफी चाहिए, ना शराब चाहिए, ना पीढ़ी से कुछ भी नहीं चाहिए, तो हम हेल्दी और हैप्पी है, राइट? तो ये आपको समझ लेना है, ये आपकी जिम्मेवारी। आपको कोई दुनिया में डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता, आपको अपने आप को ठीक करना है, राइट? डॉक्टर मदद कर सकता है, रिश्तेदार मदद कर, भगवान एक कदम चलोगे तो 1000 कदम मदद करेगा। और हेल्दी माने स्वस्थ, स्वस्थ माने सोल कॉन्शियस, स्व मीन्स आत्मा, स्वस्थ मीन्स कॉन्शियस। तो ये आपको सीखना है। चलिए पूरा हो गया। तो मन जो है हमारा सूक्ष्म शरीर है, ठीक है, टीम है ना, और आत्मा की 7 एनर्जी, आत्मा की जो 7 एनर्जी ना, वो मन के माध्यम से शरीर को जाती है, सूक्ष्म शरीर से स्थूल शरीर में एनर्जी जाती है। मन की शेप और शरीर की शेप वो सेम है, राइट? तो मन अगर पॉजिटिव है ना, सकारात्मक है, तो वो लाइट का बना हुआ है, उसमें ज्ञान की एनर्जी, पवित्रता, शांति, प्यार की एनर्जी है, खुशी की एनर्जी। और अगर नहीं तो उदासी है, चिंता, गुस्सा है, तो वो काला है, काली छाया, भूत के रूप में दिखाई देता है। तो क्या बनना है, घोस्ट बनना है कि एंजल बनना है? जो घोस्ट बनना चाहते हैं हाथ उठाओ, जो मरने के बाद भूत बनना चाहते हैं हाथ उठाओ। 2-4 तो बन जाना ना, अच्छा काम आए ना, एंजल बनना ना। तो एंजल बनने के लिए जरूरी है, राइट? भूतों की भी आवश्यकता होती है ना, नहीं? तो ये आत्मा के 7 एनर्जी बॉडी के हर सेल के लिए चाहिए, पर टीम पॉजिटिव होनी चाहिए। मुरली से टीम पॉजिटिव होती है, और परमात्मा से सुबह सुबह मेडिटेशन करो 1/2 घंटा, तो टीम पॉजिटिव, आत्मा की बैटरी चार्ज हो जाती है। और फिर आप क्या करो, हर बॉडी के एक सेल, एक अंग के लिए अलग एनर्जी चाहिए, और सुबह 4 से 5 मिनट बैटरी चार्ज हो गई, 8 बजे तक पॉजिटिव टीम पॉजिटिव रखो, तो एनर्जी बॉडी में आ जाती है। तो उसके बाद फिर शुद्ध सात्विक भोजन खाओ, प्रॉपर सैर करो, प्रॉपर नींद करो, प्रॉपर दवाई खाओ, तो क्या होता है, आपकी एनर्जी आसपास बॉडी के जमा हो जाती है। इसको ऑरा कहते हैं, आभामंडल कहते हैं, जो आपकी शील्ड बन जाती है। कोई गाली देगा, दुख गुस्सा करेगा, कोई बीमारी होगी, कुछ होगा, आपके वो असर नहीं होगा, राइट? फर्क नहीं पड़ेगा आपको कुछ। इसी को हम, यही राजयोग मेडिटेशन, ये हम प्रोग्राम करते हैं, हमारे पास लोग आते हैं, जो उनको हम हस्बैंड वाइफ इकट्ठे बुलाते हैं, जिनको हार्ट की बीमारी होती है, हम फॉर्म पहले भर के वो रिपोर्ट भेजते हैं, फिर उसको हम एनालाइज करके अपने बुलाते हैं, और इस तरह से उनको ट्रीट करते हैं, 7 दिन हमारे पास रहते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, और इस तरह से 5वें दिन 6ठे दिन तो पिकनिक करते थे, 1 घंटा डांस कर लेते हैं लोग, जो 100 कदम चल नहीं पाते हैं ना। और ये अपने प्रोग्राम बच्चों के लिए भी करते हैं, बड़ों के लिए भी करते हैं, और अभी तक लगभग 10,800-900 पेशेंट हमने किए हैं, 182 ग्रुप में, और सभी देशों में इसका नाम अभी अच्छे से हो गया। ब्रह्मा कुमार इज नोन फॉर आई नो रिवर्सिंग हार्ट डिजीज, राइट, ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो देखो मैसेज क्या है, स्पिरिचुअल केयर, बी नेचुरल, जो भी करते हो आप कौन है, बी इन सेल्फ कॉन्शियस, सोल कॉन्शियस, चलते फिरते हर काम करते अटेंशन रखो कि मैं कौन हूं, ये मैं रोल प्ले कर रहा हूं, मेरी नेचर ये है शांति, आई एम ए पीसफुल सोल, आई एम ए प्योर सोल, आई एम ए बी, आई एम ए लवफुल सोल, आई एम हैप्पी सोल, बार बार उसको ये नहीं, आई एम नॉट ए शॉर्ट टेम्पर्ड पर्सन, पैदा हुआ था गुस्सा करते करते पैदा हुआ था क्या, नहीं नहीं पीसफुल लवफुल, इसके लिए सुबह सुबह 4 बजे उठ जाओ, आधा घंटा आनंद की स्थिति का अनुभव करो, तो सारे हार्मोन्स बैलेंस में निकल जाएंगे। फिर मेंटल केयर, 8 बजे चुप रहो, क्योंकि आपका कॉर्टिसोल हार्मोन निकलता है 8 बजे तक, तो टिप्पणी आपकी टीम पॉजिटिव रखो, उसके लिए मुरली सुनते हैं रोज, कभी मिस नहीं करते, उससे हमारी टीम पॉजिटिव हो जाती है। और फिर फिजिकल केयर, बी ईट नेचुरल, ज्यादा फल सब्जियां अंकुरित दलिया रोटी सब्जी खाओ, है ना, समय पर खाओ, परमात्मा की याद में खाओ, पानी पियो परमात्मा की याद में पियो। और बीन दी डेपल मिशन, उठ सूर्य उदय होने के बाद नहाने के नहा लो सूर्योदय के पहले, फिर आधा घंटा सैर कर लो, शाम को भी आधा घंटा सनसेट के पहले सैर कर, कभी भी अंधेरे में नहीं वॉक करनी चाहिए, 10 बजे सो जाओ 4 बजे उठ जाओ, प्रॉपर मेडिसिन खाओ, एंजियोप्लास्टी बाईपास भले करा लो, पर याद रखो परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है, फिर दोबारा होने वाला, बाईपास टाइम पास है, एंजियोप्लास्टी भी टाइम पास है, तो आप सभी बीमारियां ठीक कर सकते हो, राइट। ओम शांति। इसके लिए ना मैं जो हम प्रोग्राम करते हैं उसका मैं फॉर्म है मेरे पास, फोल्डर है, किसी को चाहिए तो ले लेना, अपने लिए या किसी और अपने रिश्तेदारों की मदद करने के, दोस्तों को मदद करने के लिए वो फॉर्म भर के भेज सकते हैं। 14 से भी एक प्रोग्राम तो अभी होने वाला है, मंडे नहीं वेडनेसडे शुरू होने वाला, 13 से लोग आ जाएंगे उसमें, तो 7 दिन हमारे पर रहेंगे, तो फिर उनको हम इन्विटेशन भेजते हैं। ओम शांति।